जो आयत पढ़ रहे हैं इसके ऊपर रुक जाइए, जो पूरी कर लें इसको। चलिए अस्सलाम मिन शैतान रजीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी एक दफा ऑनलाइन पे करिएगा कि हमारी आवाज क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं सबक। बहुत ही खूबसूरत लेसन है, इसलिए इसको पूरे फोकस होकर सुनना है हमने, और दुआ करेंगे कि इस पूरे वक्त के बीच में हमें कोई भी चीज ऐसी डिस्टर्ब ना करे कि जो हमारा इस लेसन को सुनने का फोकस जो है वो कम कर दे या खत्म कर दे। तैयार है? खुद से पूछें, इस वक्त खुद से बातें किया करें कि क्या मैं इतनी बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हूं? कायनात के मालिक सबसे बड़ी जात की बात सुननी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए चंद मिनट की खामोशी, अपने दिल को तैयार करना और मखलूक से बेनियाज करना लाजिम है। शुरू करेंगे। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबक नंबर 130, आयत नंबर 18 से 34, सूरत इब्राहिम। लेसन नंबर 130, आयत नंबर 18 to 34, सूरत इब्राहिम। आयतों पे चलने से जाने से पहले, यानी आयात को शुरू करने से पहले, हम आज के सबक का मेन थीम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बातिल हो जाने वाले आमाल कौन से हैं, वो क्या चीजें हैं जो हमारी नेकियों को क्यामत के दिन डिलीट कर देंगी। कुफर की मौजूदगी में किए हुए आमाल की क्या हैसियत है। क्यामत के दिन लोग किस तरह उन लोगों को बुरा भला कहेंगे जिनकी बातों में आकर अल्लाह के रास्ते को छोड़ा था। मोमिन कैसे नेकियों का सर सब्ज दरख्त होता है। और इस्लाम A to Z, इस्लाम कहां से शुरू होता है और उसकी मेराज क्या है। वो कौन सा कलेमा है जिसको अल्लाह ताला ने कांटों वाले दरख्त के साथ तशबीह दी है। कब्र के सवाल जवाब क्या होंगे और बात पर साबित कदम कौन रहेगा। और उसके बाद फिर क्यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी और उस वक्त लोगों की क्या कैफियत होगी। इतना कुछ है आज के सबक में कि हर बात अपनी जगह एक पूरा मौजू है। अगर हम सिर्फ इसकी एक आयत या एक मफहूम की आयतें भी करें तो हम पूरा वक्त उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हमें हर बात को उसका हक अदा करते हुए समझने की तौफीक अता फरमाए। सबक को शुरू करेंगे, और जब शुरू करें तो उससे पहले जहन में अगर पिछली बात भी हो कि हमने आखिरी बात क्या की थी, जहन्नम का जिक्र था। पिछले सबक के आखिर में हमने दिल को पिघला देने वाली जहन्नम के मुतालिक आयात पढ़ी थी कि क्यामत के दिन वो लोग जिनको दुनिया में कोल्ड ड्रिंक्स की आदत थी, जो दुनिया में अपने आप को बहुत ज्यादा लग्जरियस माहौल में रखने के आदी थे, उनके साथ वहां क्या होने वाला है। अब यहां से काफिर के आमाल की बात है। आप कह सकते हैं कि पिछले सबक के आखिर में काफिर का इंजाम था, कुफर की मौजूदगी में इंसान की अगर दुनिया से जाने की बात हो गई, यानी अगर काफिर के दुनिया से जाने का वक्त कुफर पे हो गया, तो फिर उसका इंजाम क्या है, इसको हमने पिछले सबक में देखा था। आज हम देखेंगे कि कुफर की मौजूदगी में की हुई नेकियां, उनका क़यामत के दिन क्या मुकाम होगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 18, मसलुल्लज़ीना कफरू बि रब्बिहिम, मिसाल इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, ऐसी है गोया के करमाद, जैसे राख। रमाद राख को कहते हैं, ऐश जैसे उर्दू में भी आप बोलते हैं, जो है इंग्लिश का लफ्ज ऐश ट्रे, हम तो उसको ऐश ट्रे कह देते हैं ना, तो ऐश वो चीज के जो हाथ ना आए, लकड़ी की फॉर्म में, अगर आप लकड़ी को छुएं तो कुछ ना कुछ आपको चुभेगा, और जलती हुई लकड़ी को भी पकड़ें तो कुछ ना कुछ एहसास होगा, लेकिन अगर कहीं पड़ी हुई राख देखें, दूर से देखें, तो हो सकता है वो पूरा ट्रे का ट्रे भरा हो, लेकिन जब उसको आप छुएंगे तो वो आपकी उंगलियों के साथ चिपक जाएगी। ये है रमाद, यानी एक ऐसी राख बना दी जाएगी उन आमाल की जो कुफर की मौजूदगी में किए गए, कि जो हाथ ना आएगी। और फिर उसके साथ होगा क्या, आगे देखिए, निश्तद्दत बिहि रीहु फी यौमिन आसिफ, कि जिस पर जोरदार हवा चले आंधी के दिन। तसव्वुर में लाइए कि जिन लोगों ने गलत काम किए, यानी जिनका अकीदा गलत था, सोच गलत थी, अल्लाह के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं था, लेकिन नेकियों के नाम पे नेकियां भी की, चैरिटी की, सोशल वर्क किया, हुकूक वाले बात पे नाम पे काम किया, एनजीओस बनाई, वीमेन राइट की बात की, लेबर वर्क की बात की, और एटमॉस्फेयर की बात की। आज लोग आपको बहुत सारे नेकी के काम करते दिखेंगे, तो ऐसे लोगों की नेकियों का हाल क्या है, कि किसी आंधी वाले दिन जो हाल राख का होता है। इमेजिन करें, कहीं राख का ढेर था और हवा चली, जोर से चली, तो सब बिखर जाएगी, और इस तरह बिखरेगी कि उसमें से कुछ भी हाथ नहीं आएगा और सब जाया। इतना जबरदस्त ये अंदाज है इंसान के शऊर को हला देने वाला, कि जो इंसान को नेकियां करने के शौक से ज्यादा अपने अकीदे की इसलाह की फिक्र लगा देता है। अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों में भी ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने का शौक तो है, और खास तौर पे कुछ खास मौकों पे, कुछ खास दिनों पे, शबे बिराज, शबे मेराज, रबी अव्वल, रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुख्तलिफ मौके पे नेकियां करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज का शौक कम हो गया या नापैद होने के बराबर है, वो इल्म सीखने का शौक कम हो गया। हालांकि कुफर की मौजूदगी सिर्फ काफिर में नहीं होती, सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं, वमा यूमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करने वाले कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग मुशरिक होते हैं। तो गोया के काफिर से मुराद यहां सिर्फ लिटरली वो काफिर नहीं है जिसको मैं और आप डिसबिलीवर कहते हैं, नॉन मुस्लिम कहते हैं, जिसको रौना से मुर्दों में काफिर और फाजिर कहते हैं, बल्कि इससे मुराद हर वो बंदा जो रब को किसी दर्जे पर नहीं मानता। इससे मुराद वो भी हो सकता है जो रब को नहीं मानता, और इससे मुराद वो भी हो सकता है कि जो रब को तो मानता है लेकिन साथ ही साथ रब को हिसाब लेने वाला नहीं मानता, और इससे फिर दर्जे करते जाए हल्के से हल्के, तो बेनमाजी भी हो सकता है, क्योंकि कुफर के मुख्तलिफ शेप्स हैं। आपको पीछे भी बताया था कि कुफर के कई रंग हैं, जैसे ब्लैक से व्हाइट आने तक बीच में ग्रे के कितने डिफरेंट शेड आते हैं। तो कुफर एक हकीकी होता है जो आंखों से भी देखा जाता है, जुबान से भी वो बोलते हैं, लेकिन एक वो कुफर होता है कि जिसको आप जुबान से नहीं भी समझ पाते, लेकिन उसके अंदर कई ऐसी कमजोरियां होती हैं। तो लिहाजा ऐसी चीजें कि जिसके अंदर इंसान अल्लाह ताला की कोई ऐसी बड़ी नाफरमानी कर बैठे कि ईमान से कुफर की सीढ़ी पे चल जाए, कोई ऐसा कबायर का आदि, कबीरा गुनाहों का मर्तकब कोई भी हो सकता है, तो इसकी मौजूदगी में इंसान की वो की हुई नेकियां भी कबूल नहीं होती। आप सोचेंगे वाय, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश कर देती हूँ, अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊं इसमें। आप देखिए कि कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज में दाखिला ना ले, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना ले, क्यों ना ले, कि फिर बहुत पाबंदियां लगेंगी, वक्त पे आना, वक्त पे जाना और सो ऑन, जो भी आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट्स में होता है। हाँ करूं क्या कि हर पेपर जो दूसरे स्टूडेंट भी करेंगे मैं अपने घर में करता रहूं, और पेपर करे अच्छी तरह से और बाद में स्कूल वालों को भेजे, ठीक है मैं तुम्हारा स्टूडेंट तो नहीं बन सकता लेकिन ये मेरा पेपर तुम चेक कर लो, क्या उस पेपर की बुनियाद पे कोई उसको डॉक्टर बना देगा? वो कहेंगे आपका तो नाम ही हमारी लिस्टों में नहीं है। देखिए दीन के इदारों में अगर ये सारा सिलसिला हो भी, फिर भी अगर कोई एक लफ्ज की साइन नहीं करता, कोई एक लफ्ज की रजिस्ट्रेशन नहीं करता, मोस्ट वेलकम, उसको हिदायत की तलब है, वो हिदायत लेने बैठ गया, वो नहीं लिखना चाहता ना लिखे, नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े, नहीं सुनाना चाहता ना सुनाए, क्योंकि ये तो आखिरत का मामला है। लेकिन क्या आपने कभी किसी स्कूल, मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में वॉलंटियरली या एज अ लिसनर, एज अ गेस्ट किसी को जाते देखा? इजाजत देते? आप चले जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कहना दाखिला नहीं लेना बस ऐसे ही जाना चाहती हूँ, बैठूंगी आपके साथ, आप कैसे लगते हैं? कभी नहीं कोई लॉ करेगा। तो जिस तरह दुनिया में कोई डिग्री लेने से पहले एनरोलमेंट लाजमी होता है, उस इंस्टीट्यूट के खातों में, उनके अकाउंट्स में आपका नाम आना लाजमी है। इसी तरह आखिरत किसकी है? अल्लाह की। क्यामत के बाद की जो पूरी जिंदगी, जो तू वहां का कंट्रोल है वो अल्लाह के हाथ में, दुनिया का भी है लेकिन अल्लाह की सुन्नत फर्क है। तो आखिरत में उसी बंदे को कुछ मिलेगा जिसने ईमान के रजिस्टर में साइन किए होंगे। देखिए ईमान नाम ही दिल के यकीन और जुबान के इकरार और अमल बिल जवारे का नाम है। तीन चीजों से ईमान पूरा होता है। दिल से आप अल्लाह की बड़ाई को मानते हैं, फिर सबके बीच में आके शहादा देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने नहीं दी तो बचपन में हमारे कानों में जो अजान डाल दी गई वही थी। थोड़ी सी बच्चों की ट्रेनिंग की जरूरत है, घबराने की बात नहीं है। ये कौन सा बच्चा है? अनम आपका बेटा है? देखिए जिस जो भी माँ है ना, जिनका भी बच्चा है, आप उसको अपने साथ लेके बैठे। जब आप बच्चों को चलता फिरता छोड़ेंगे वो लड़ेंगे खेलेंगे, और उनको बिजी करें, कापी पेन दें उन्हें, कहें कि आप लिखें, आप देखिएगा वो आपसे अच्छे नोट्स लेंगे। ये अलग बात है कि बाद में पढ़े ना जाए, ठीक है? और एक एक लॉलीपॉप रखें और इनके मुंह में दे दें, और इंशाल्लाह ताला जब आप इनको अग्रेसिव नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होंगे। चलिए अब अगर बच्चा रोया तो ये माँ का कसूर है, बच्चे का नहीं, ठीक है? चलिए तो बात हम कह रहे थे कि ईमान तीन चीजों से मिलके बनता है। पहले दिल में अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है, फिर जुबान से उसका यकीन दिलाया जाता है, और फिर सारी जिंदगी आमाल कर करके बताया जाता है कि अल्लाह हम स्टिल आए वह मुस्लिम। तो लिहाजा इबलीस ने क्या किया था? दिल से अल्लाह को माना था, रब्बी कहता था ना, रब्बी फानजिर नीला यौम युबासून। आगे सूरह हिजर में आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे फिरौन की बातें, सॉरी इबलीस की बातें जो उसने अल्लाह तआला के सामने की थी, ठीक है? तो रब मानता था, जुबान से इकरार किया, फिर काफिर क्यों बना? कान मिनल काफिरीन, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके उसके लिए, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया था। तो ईमान किसी चीज के बेसोचे समझे दोहरा देने का नाम नहीं, खास तौर पर हर वो काम जो लोगों में बड़ा बनने के लिए लोगों ने किया, रियाकारी दिखावा सब कुछ इसमें आता है। हर वो अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए ना हो वो अल्लाह कल कबूल नहीं करेगा। रियाकारी के उजर में भी इसको, रियाकारी के एंगल से भी इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप देखिए कि कोई शख्स आपके पास आया किसी दावत में, और भी लोग थे वहां, कोई ईद का दिन था, कुछ भी था। अब आपने देखा उसके हाथ में गिफ्ट पैक है, और आपने समझा कि ये उसने मेरे लिए लिया है, तो आप उसको देख के कह रहे इसकी क्या जरूरत थी, और आप ये समझे कि ये आपके लिए। उसने भी कह दिया अच्छा हाँ नहीं नहीं मैं ले आया, उसने आपको दे दिया। बाद में कोई दूसरा जो उसके साथ आया था आपको बताया कि असल में वो आपके लिए तो नहीं लाए थे गिफ्ट बैग, वो तो चूके आपने कह दिया तो फिर उन्होंने मरोगत में आपको दे दिया। तो क्या आप वो उस गिफ्ट बैग को रखेंगे? आपको तो गम लग जाएगा, आप कहेंगे ओहो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये वो मेरे लिए तो लाए नहीं। तो जब मैं और आप अपने अलावा किसी और के लिए आए हुए गिफ्ट को कबूल नहीं करेंगे, तो क्या अल्लाह उन नेकियों को कबूल करेगा जो उसके लिए की नहीं? की तो लोगों के लिए थी, लोगों में बड़ा बनने के लिए थी, उसकी तरफ थी, तो कह दिया कल अल्लाह इसका अजर दे दे, ये नहीं हो सकता। और याद रखिए किसी अमल की कबूलियत की दो बुनियादी शर्तें हैं, इखलास जिसको आप कहेंगे लिल्लाहियत, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ओनली फॉर अल्लाह, और दूसरी उसवे हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। قیامت کے دن ہماری ہر نیکی کو میچ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی سے. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی ملک سے کوئی آرڈر آتا ہے نا پاکستان میں, تو جب وہ آرڈر کا سیمپل دکھتا ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں, پھر جب بعد میں اصل کنسائنمنٹ پہنچتا ہے نا تو وہ اپنے پلیس کیے ہوئے آرڈر کو دیکھتے ہیں اس سیمپل کے ساتھ, ایز اٹ از وہی چیز ڈیلیور ہوئی ہے تو 100 دفعہ لے لیں گے, اور اگر ذرا کمی بیشی ہو گئی وہ کہیں گے دیکھیں آپ کا آرڈر جو آیا ہے وہ ہمارے کیے ہوئے آرڈر سے میچ نہیں کرتا. تو قیامت کے دن وہاں بہت بڑے بڑے ڈیڈکٹر لگے ہوں گے. اگر ہمارا کوئی عمل چاہے وقت اور معاشرے میں کتنا رواج کیوں نہ پا جائے, صدیوں کی روایتیں اور اس کے ساتھ کتنے فضائل کی چیزیں کیوں نہ لگی ہوں, اگر اللہ کے نبی نے وہ نہیں کیا اور آپ نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا, قیامت کے دن کرماد نشتدت بھی, یہ جو لفظ ہے نشتدت کیا لفظ ہے اس میں آپ کو بتا, شدید نہیں نہیں تا بھی نہیں ہے اس میں, شدید شین دال دال, اس میں اشتدت, یہ سب شدتیں ہیں. اور عربی زبان کا اصول ہے کہ جس چیز میں لفظ زیادہ آ جاتے ہیں اصل لفظوں سے اس میں مفہوم میں شدت پائی جاتی ہے. تو گویا کہ قیامت کے دن جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ کافر کی نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی, رکھو آئی ڈونٹ نیڈ, تم نے مجھے تو مانا ہی نہیں. آج اس میں بہت سارے لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی مل جانا چاہیے جو بڑے تپاک سے کچھ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں, فلاں جنت میں جائے گی فلاں جائے گا, وہ تو اتنی خدمت کر گئے, وہ تو لیپرسی کے مریضوں کو دیکھ گئے اور انہوں نے تو سوشل ورک کے کیے, مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی جنت اللہ کے بندے, ہمیں تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح ہیں کہ نہیں, کیا ہمارے عمل قبول ہوں گے کہ نہیں. اور یاد رکھیے یہ قرآن کا واحد مقام نہیں ہے, بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا. سورۃ کہف میں آتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں تو ساری دنیا کے لیے تھی, دوڑ دھوپ تو وہ اس دنیا کے لیے کرتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ, حالانکہ وہ گمان یہ کرتے رہے کہ نم یحسنون سنا, کہ وہ کام بڑے خوبصورت کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے, کوئی کام کرنے سے پہلے اسٹیمپ دیکھیے, کوئی چھوٹی سی چیز خریدتے ہیں تو اسٹیمپ دیکھ کے لیتے ہیں نا, اصلی ہے کہ نقلی, پہلے اسٹیمپ دیکھتے ہیں پھر دوسرے درجے پہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیمپ بھی اصلی ہے کہ نہیں, نقلی تو نہیں, کہیں کاپیڈ تو نہیں ہے یہ. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہر معاملے کی اسٹیمپ دیکھی جائے گی, اور اگر یہ نہیں تو ریجیکٹڈ, اس کو ادھر کر دو. بعض دفعہ اچھی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کوالٹی کانشیس کے لیے اتنی اچھی اچھی چیزوں کو ریجیکٹ کر کے پھر آؤٹ لیٹس میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے نام سے ایسے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو سٹینڈرڈ ہم نے لوگوں سے کمٹ کیا ہوا ہے یہ اس پہ پورا نہیں اترتا. تو اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ تو اس سے بہت ہی خوبصورت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اسی طرح اس کے بارے میں سورت واقعہ میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو کیا کر دے گا, ہوا منصورا. سورت آئے 39 میں, سورت نور کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سراب سے تشبیہ دی ہے, کافروں کے عمل سراب. سراب کیا ہوتا ہے؟ معراج, وہ دھوپ میں جو دکھتا ہے دور سے ایسے پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ہوا منصورہ, سورہ واقعہ والی بات نکال دے, سورہ فرقان کی آیت 23 میں ہوا منصورہ, ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح. دیکھیے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور رکھتا ہے. نیکی ہر انسان کی روح کی پکار ہے. سورت بر کو یاد, آیت بر یاد ہے آپ کو, سی ڈی بھی اس کی بنی تھی, یہاں دو سی ڈیز, دین کی اصل روح کیا. تو اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ بد سے بد انسان بھی کچھ نیکی کرنا چاہتا ہے. کوئی طوائف ہے اگر آپ اس سے پوچھے جسم فروشی کرتی ہے تو کیا وہ نیکی نہیں کرتی؟ نہیں, وہ بھی جا کے محرموں میں کہیں سویلیں لگوا دیتی ہیں, وہ بھی کہیں جا کے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں چلو پیسے لیے تو اگلے کو خوش کرے. چور ڈاکو بھی چوری کرتے ہیں نا, تو وہ اس پیسے کو لا کر اپنے مالک کے ہاتھ میں گینگ کے رکھتے ہیں, جو ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. کئی چوروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ اپنے محلے میں چوری نہیں کرتا. تو نیکی تو ہر بندے کے روپ میں گھسی ہوئی ہے, لیکن اصل نیکی کیا ہے یہ اللہ سے پوچھنا پڑے گا اور اس کے رسول سے, اور اسی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے. اصل میں یہ آیتیں اگلی آیتوں کی تمہید ہے جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا تو اس کی نیکی کا تصور بھی مسخ ہو جاتا ہے. नेकी जब आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे करते हैं ना, बहुत इजी और इजी गोइंग और बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाली होती है। लेकिन जब इंसान नेकी के नाम पर अजीबोगरीब काम करे तो आप देखिए कि धमाल डालना और कब्रों पे जाके वहां खाने खाना खिलाना भांग जूसना, आप उससे जाके पूछे वो कहेगा हम नेकी के नाम पे कर रहे हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ला यकदिरून मिम्मा कसबू अला शय, इन्हें कुछ भी हाथ ना आएगा उस कमाई में से जो उन्होंने की। जालिक हुव दलालुल बईद, और ये बहुत दूर की गुमराही है। ऐसा इंसान रब के साथ नाफरमानी करके सरकशी करके अपनी की हुई नेकियों को जाया करेगा, और ऐसा बंदा इतनी दूर भटक गया कि वहां से वापस आने के चांसेस नहीं है। वो ये समझ रहा कि दुनिया में कितनी शोहरत कमाई, कितने रिकॉर्ड कायम किए, गिनीज बुक में नाम आ गया, वर्ल्ड बुक्स में आ गया, नस्लें याद रखेंगी, क्यामत के आने से पहले राख बनकर ये सब खत्म होंगे। और आपको तो ऐसा शख्स क्यामत के मैदान में अपनी नेकियों को देखेगा और उनके पीछे भागना शुरू कर देगा, हांफता जाएगा हांफता जाएगा, जितना दूर जाएगा नेकी उससे भी दूर भागती जाएगी, और हम ऐसे गिर पड़ेगा जब, तो अल्लाह को अपने ऊपर हिसाब लेने वाला पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बातिल होने वाले अमाल से हमें महफूज रखे। एक और तरीका भी होता है जिससे इंसान के अमाल जाया हो जाते हैं, वो क्या कि पहले अच्छे काम करना फिर खुद ही उसको किसी वजह से जाया कर देना। हमारे यहाँ कहते हैं कि हलवा पका के ऊपर आग डाल देना। कुछ लोग किसी की खातिर तवारत बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो भी हमारे कल्चर की चीजें, बाद में बातें सुनाते हैं, या थक गए थे इतने दिन आए बच्चों को ले आए, बच्चे खराब कर, यानी कुछ ऐसी जाते जाते बातें कर दी कि बाद दफा बहनें अपने भाइयों के घर में बच्चों के साथ जब आती हैं तो नाराज होकर चली जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखो एक महीना में रखा लेकिन आखिर में ऐसी ऐसी बातें कह दी कि दिल बुरा हो गया। इसी तरह याद रखें कि आज अगर मैं और आप कोई नेकी करते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो कल इसको संभाल के रखें। एक जुमला बोलूंगी, बड़े शौर से लिखिएगा। नेकी करना निस्बतन आसान है, लेकिन नेकी को संभालना बहुत मुश्किल है। अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझसे नेकियां संभालें। ये तो नहीं कि एक बाग लगाएं और एक ऐसे करें, एक फूल लगाएं और एक अंदर करें, दूसरा लगाएं तो उसको बुझा दें, तीसरे को कर दें तो क्या होगा। ऐसे लोग जो हैं वो फिर उन नेकियों के बाग में कभी भी नए नए रंग नहीं देखेंगे। अगली आयत में देखिएगा, जीएससी बंद कर दे रहा हूं। आयत 19, अलम तर अन अल्लाह खलक समावाती व अर्द बिल हक, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। क्या है हक, यशयुज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए, गेट आउट, निकल जाओ यहां से, वयाति बिखल्क़िन जदीद, और एक नई मखलूक को ले आए, वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़, और ये काम अल्लाह पर कुछ भी बोझल नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है। ये दो आयतें हम सबको बहुत कुछ सोचने का मौका दे रही हैं। पहली बात देखिए कि इस कायनात की तश्कील हक की बुनियाद पे हुई। क्यामत के मैदान में सिर्फ और सिर्फ वजन हक का होगा, पीछे पढ़ चुके हैं, वल वज़्नु यौमा इज़िनिल हक। हक क्या है तो लिख लीजिए, मकसद। कायनात किस हक पर पैदा हुई, ठोस बुनियाद पर। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मकसद क्या था, किस सोच के साथ ये आयत कुरान कायनात पैदा की गई। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये है हक, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको देखे तुम में से कौन अच्छे काम करता है, ये है हक। हम सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम सब बहुत बड़े बड़े कैमरों की जद में है, और हमें इसकी फिक्र लग जानी चाहिए कि अल्लाह के कैमरों में हम कैसे आते हैं। और आयत का आगाज देखिए, अलम तारो, क्या आपने नहीं देखा, ये कौन सा देखना है, गौर करो, अंदर से देखो, सोचो। नबी सल्लम को कहकर हम सबको सुनाया गया, और यहां रुअत है, कल्बी मुराद है। आंखों से तो कुछ चीजें नजर आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखने के लिए दिल की जरूरत होती है। तो बिल हक से मुराद क्या है, हर चीज को जिस मकसद के लिए होना चाहिए उसी के लिए वो बने। कोई इंसान अल्लाह की मजबूरी नहीं है, याद रखिए। अगर हम कायनात में आने का मकसद नहीं पूरा करेंगे ना, तो अल्लाह कहता है युज़हिबकुम, तुम्हें ले जाऊंगा। कितने दिन मजा करोगे इस दुनिया में, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। वयाति भी खल्किन जदीद, और एक नई मखलूक लाऊंगा। अगर हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बातें नहीं मानेंगे ना, तो अल्लाह ताला को कोई किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, कोई NOC नहीं चाहिए अल्लाह को, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि क्या मैं इनको अब दुनिया से ले जाऊं, इनको एक्सपोर्ट कर दूं इस दुनिया से और इनको फेंक दूं उधर जाके, कोई उसको पूछ नहीं सकता। इसलिए जरूरत है इस बात की कि वो फिक्र करे। पीछे आप देखिए कि कुफार के अमाल राख हवा में उड़ते हुए बिखरे, जिनको जमा करना मुमकिन ही नहीं है। और अब यहां मिसालें दी जा रही हैं कि देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी गुजारने का मकसद वाजे नहीं है, तो तुम बिल्कुल क्यामत के दिन जो हाल होगा, आज दुनिया में भी है ये। कैसे? आप देखिए, जिन लोगों ने इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझा, वो क्या कर रहे हैं? ईट ड्रिंक बी मैरी, जी और जीने दो, लेट एंड लेट टू लिव, मौज करो, मस्ती करो। बाबर वैश कोश के जहां दोबारा नीस्त, उनके लिए जिंदगी के फन एंड फ्रॉलिक, मौज करो, वीकेंड वीकडेज कॉन्सर्ट्स, मजे करो, मस्तियां करो। 6-6 महीने पहले टिकट चुको और जितना कमाओ उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दो, और फिर कर्जों में जियो, कर्जों में मर जाओ। कोई बात नहीं, मौज मजा कर लो, बाद में गाड़ी चलेगी, कर्जे में तो जाने दो। ये है उन लोगों की जिंदगी। अब आप उनका आज का लाइफ स्टाइल देखें तो इसमें और अमाल के राख बनने में मुवासलत दिख रही है आपको? बिल्कुल। काफिर लॉस्ट है आज दुनिया में भी। पीछे वही बात याद कर रहे हैं, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम, उसको सुकून को नहीं मिलता, वो सुकून की तलाश में बेचारा कॉन्सर्ट में गया, ऊंची आवाज से म्यूजिक सुना, शराब के नशे में धुत हुआ, जो ही नशा उतरा, जो ही उस महफिल से निकला, दोबारा और डिप्रेशन में चला गया। तो जो दुनिया में उसने अपना लाइफ स्टाइल बनाया था, क्यामत के दिन उसके साथ वहां जाके बिल्कुल यही हाल होगा। तो लिहाजा अल्लाह ने अगर आपको और मुझे जिंदगी का एक मकसद सुझा दिया है, तो इसकी कदर करें, इस पे शुक्र करें। इसको फिर अगर दुनिया की रौनकों, मेलों ठेलों और दुनिया की डिस्ट्रेक्शंस की नजर कर दिया ना, तो याद रखिए क्यामत के दिन हाथ तो क्या अपने पूरे पूरे बाजुओं को चबा जाएंगे और हमारी हसरत खत्म नहीं होगी। अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए। तुम गलत काम करके जो जी रहे हो ना, तो ये अल्लाह ताला का हिल्म है, उसका सबूर होना है, तुम उसकी मजबूरी नहीं हो। ये तुम्हें कहीं फेंके, तुम पैदा जो हो गए हो, तो क्या अल्लाह को मजबूरी हो गई कि वो तुम्हारे लिए तुम्हें जरूर जिंदा रखे? नहीं, उस पे ये सब आसान है। वमा ज़ालिका अल्लाह भी अजीज, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। पहली दफा जब मैंने पढ़ी थी मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि अजीज का मानी तो गालिब होता है। तो वमा ज़ालिका अला, तो यहां समझ लीजिए अला मैंने अपॉन, यानी ये बात अल्लाह पर गालिब नहीं है, मतलब ये कि अल्लाह पे आसान है। कभी भी आज कोई बड़ी अनयूजल बात करे तो मेरे मुंह से भी यही आयत निकलती है, वमा ज़ालिका अल्लाह भी अजीज। आप कहते हैं ये हो जाए, ये मेरी नजर में ये कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह कर सकता है इस काम को। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि हम सब इस दुनिया में आने का मकसद समझे, जिस काम के लिए उसने पैदा किया उस काम में लग जाओ। लेकिन इंसान का हाल क्या है कि वो इन बातों को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे खो जाता है। आज अगर सिर्फ हम अपना हिसाब लेके देख लें, दूसरों को तो छोड़ दें, हमें दूसरों के हिसाब से मिलना भी क्या, फेल हो पास हो, लेकिन हमें तो अपनी बहुत फिक्र है। हम समझते हैं कि हम दीन पढ़कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, दीन पर भी और दीन वालों पर भी और अपने घर वालों पर भी, और बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत जी हम नेक हो गए, लेकिन दीन हमारा दिखता है हमारे मामलात में। जितनी नेमतें हम अल्लाह से लेते हैं ना रोज, उसका अगर हक अदा करने पे आ जाए तो हमारे सर सजदों से ना उठे। दुनिया को कभी भी किस दुनिया में किसी को बड़ा काम करता देखे ना, तो हम कहते हैं हाय ये ना होगा ना तो काम नहीं होगा, हाय इसके ना होने में बहुत फर्क पड़ता है। माँ घर में ना हो ना, तो थोड़ी देर बाद आके देखें तो घर का नक्शा बदला होता है। लेकिन आप देखिए, बड़े बड़े लोग दुनिया में आए और आके चले गए, ना सूरज रुका, न चांद की रोशनी कम हुई, नबी आए चले गए, साइंसदान आए, दुनियावी काम करके गए। जो यहां कुछ करके गया उसको खुद ही फायदा होगा। अल्लाह कहते तुम मुझे नखरे ना दिखाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम हुज्जतें करते रहते हो, जाओ भाग जाओ। याति भी खल्कन जदीद, उसकी बड़ी मखलूक है, एक लम्हे में तुम्हें मिटा कर दूसरों को ला सकता है। देखिए ये तो इंसानी बातें हैं ना, लेकिन अगर आप इसको एक निजाम से समझें तो अल्लाह ताला ने हमें एक निजाम दिया इस्लाम की सूरत में, हमने उसकी कदर ना की, अल्लाह ने हमें हटाकर दुनिया की भाग दौड़ दूसरों के हाथ में दे दी, जो कुफर की मौजूदगी में कामयाब है। हालांकि कुफर के साथ कभी कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन वो क्यों कामयाब है आपको पता? कि कुफर की मौजूदगी में उन्होंने इस्लाम का निजाम नाफिज किया हुआ अपने मुल्कों में। इस्लाम का निजाम क्या है? अदल, जस्टिस, लोगों को फलाह व बहबूद दो, उनके हकूक पूरे करो, जुल्म ना करो। तो कुफर के साथ वो पनप रहे हैं और इस्लाम के साथ हम धक्के खा रहे हैं। 5 मिनट खबरें सुन लें आप सिर्फ अपने मुसलमान मुल्कों की, तो आपको अपनी असल समझ आ जाएगी कि लाशों के ढेर और गोलियों की बौछार और पुलिस मुकाबले और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और ऐसे लगता है कि ये कोई दुश्मनी ले रहा है हमसे, हमें ये खबरें सुना के हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा, देखो ये भी किया तुमने, ये भी किया। जिन बातों को छुपाना चाहिए बड़ी हुकूमतें छुपाती हैं। आप कहते हैं कि नॉर्वे में टीवी आप देखें, आपको किसी कत्ल की खबर नहीं मिलेगी, कोई बैड न्यूज वो अपने मीडिया पे नहीं देते। एक तो वैसे ही अमन है और खबरों में नहीं आती ऐसी बातें, तो ऐसे लगता है मुल्क में कुछ होता नहीं। उनकी पुलिस को पुलिटी कहते हैं, पुलिती, तो हम हंसते हैं उसको पढ़ते हुए कि ये पुलाइटी लगते हैं, स्माइल करते हैं। मैं इनको अक्सर पूछती हूँ कि यहाँ की पुलिस वाकई सख्ती करती है। एक सिस्टर है हमारी स्टूडेंट्स में से, तो वो खुद पुलिस में थी और अभी भी कुछ ना कुछ उनका है, तो मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि सुनाओ यहाँ जुर्म होते हैं? कहती होते हैं। यहाँ पुलिस पकड़ती? कहती पकड़ती। तो मैंने कहा मीडिया पे क्यों नहीं आता, आम देख के फीलिंग क्यों नहीं आती? इसलिए कि उसकी तशहीर नहीं करते। याद रखिए कि बुराई से ज्यादा बुराई का चर्चा होता है। पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह 18वें पारे में सूरत नूर में कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु बिल्लज़ीना आमनू, कुछ लोगों का तो ये प्लान है कि ईमान वालों में फहाशी आम हो जाए, वो तशहीर करते हैं, नशरोशात करते हैं। तो कभी आपको मुझे किसी की बुराई पता चले, किसी फर्द की, किसी जमात की, किसी गिरोह की, किसी शख्सियत की, किसी सियासतदान की, खुदा के लिए उसको जिप करके अपने मुंह को सीधे एक लफ्ज ना उस पर बोले, नहीं तो आपका उसमें हिस्सा पड़ जाएगा। अब आप कुरान पढ़ने वाले हैं, आपका किरदार बोलना चाहिए। कभी आपके मुंह से किसी दूसरे साथी के बारे में एक लफ्ज कोई ना सुने, कोई आपसे बात भी करने लगे तो आप अपने कानों को कुरान के नूर से रोशन कर ले, अगर ये किरदार बनना चाहते हैं। वरना फितनों की ऐसी आंधियां चलेंगी आपकी जिंदगी में कि ये कुरान भी आपको नहीं संभाल सकेगा। तो जिस नेमत की इंसान कदर नहीं करता उसको अल्लाह दूसरों को दे देता है। आज भी हमारी छोड़ी हुई किताबों को गैर मुस्लिमों ने संभाल कर रखा हुआ है। आज आप जाके देखिए नॉन मुस्लिम लाइब्रेरियों में मुसलमानों का वो विरसा और वो किताबें जो एक वक्त में हमारा असर थी, आज आप जाके देखें इनकी जगहों पे मौजूद है। खास रूम टेम्परेचर रखे हुए उन्होंने पुरानी किताबों के लिए। ये इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी जगह, क्योंकि वो इतनी ओल्ड बुक्स हो चुकी हैं कि वो गर्मी सर्दी का बर्दाश्त ही नहीं करती, तो उन्होंने रूम को ऐसे टेम्परेचर पे रखा है कि ये पेज अब ज्यादा खराब ना हो, और वहां आपकी मेरी किताबें रखी हुई हैं। आज भी अगर आपको मौका मिले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके आप कुरान पाक के पुराने नुस्खे देख लें। हमने हिफाजत नहीं की, अल्लाह ने गैरों से करा ली, उसको क्या लगे, उसको क्या लगे। अगर मैं यहाँ के बैठी हूं तो शुक्र करें कि बैठी हुई, वो ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ, चली जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक खबर छपी थी कुछ अरसा पहले बरतानिया के एक अखबार में, तो उसका टॉपिक क्या था? अ लीफ फ्रॉम द कुरान, कुरान में से एक सफा या एक पत्ता। और उसका खुलासा क्या था कि बरतानिया को फलाही रियासत बनाने का नजरिया देने वाले का बयान, उसका नाम भी लिखा हुआ है मार्क टेलर, टेलर कुछ नाम था, है मार्क टेलर, कहता है कि मैंने ये आइडिया उमरे फारूक से लिया। हजरत उमर ने अपने दौर में जो कानून बनाए थे ना, याद आपके ब्रिटिश में, ये जिसको आप कहते हैं ना सोशल हेल्प करते हैं, काउंसिल करती है हेल्प, नॉर्वे में जहां भी जिधर भी आप सुनते हैं जी सोशल हेल्प बहुत मिलती है, ये हजरत उमर का नजरिया था। आज कोई मुसलमान ये आइडिया क्यों ना ले सका? आज हमने उन किताबों से, उन मुसलमानों से फैज ना लिया। अल्लाह ने तो उनकी नेकियां जाया नहीं करनी, मैं नहीं यूज करूंगी, कोई और कर लेगा। अल्लाह अकबर। आप पता कि ये एक बहुत बड़ा शोशा उठा था कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, ये आज की सदी से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला खत्म हो गया। तो इस बात की तस्दीक कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा, इसकी तस्दीक एक नॉन मुस्लिम ने की थी। क्यों? वो कहता है कि मैंने कुरान को भी पढ़ा और मैंने हदीस को भी पढ़ा, दोनों की जुबान में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अपने दौर में इस बात पे स्टैंड लिया था कि कुरान मोहम्मद ने नहीं लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसकी स्पीच हदीस से बहुत फर्क है। कभी आप हैरान हो, एक मुझे अभी इस वक्त याद नहीं, एक अलमोजम अलमुफहरिस एक डिक्शनरी है, नॉन मुस्लिम्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें, जिसको आप ऑथेंटिक रिवायत है के, उन सब का इंडेक्स बनाया हुआ है। उस इंडेक्स को आप खोले, कौन सी हदीस नमाज के मौजू पे बुखारी में, मुस्लिम में, किस किताब में, आपको उनकी उस इंडेक्स में मिल जाती है। हम कहाँ थे इतना सर्च वर्क करने वाले, रिसर्च वर्क, हमें तो अभी कपड़ों की रिसर्च करनी है, हमें तो अभी ज्वेलरी की रिसर्च करनी है, अभी तो मैचिंग जूते नहीं मिल रहे, पर्स नहीं मिलेंगे, तौबा करो, फिर तो और भी बड़े गम है। हम तो आज इस रिसर्च में पड़ गए, कितना हमारा जिंदगी का मकसद छोटा हो गया। वो कहता है कि नबी पाक ने कई चीजें ऐसी बयान की जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। कुरान कितना जिक्र है कुरान में समंदर का, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में समंदर नहीं देखा था। लेकिन आगे भी आप पढ़ेंगे समंदर की मिसालें आती हैं। तो दुआ कीजिए कि हम इस वर्षे की हिफाजत करें, वल्लाही, नहीं तो हमें अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आज भी आप देखिए कि अल्लाह की तरफ से छांटी हो रही है, कैसे नॉन मुस्लिम आगे आ रहे हैं इस्लाम कबूल कर करके, और हम बोन मुस्लिम बहुत शोखियां बखेरने वाले दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। चलो अब जो हुआ वो तो हुआ, अब जरा कियामत की एक झलकी देखो, आयत 21 में हम सबको मैदाने माशर में लेके जाया जा रहा है। वबरजूलिल्लाहि जमीया, और वो सब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, सब स्टैंड स्ट्रिंग। आज दुनिया में होना चाहिए था अल्लाह के सामने खड़ा होना, हम इसमें नहीं होते। ये जो नमाज का क्याम है ना, ये क्यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा किए जाने की प्रैक्टिस है। और ये माजी का सीगा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बराजू। अगर आप इसको लफ्जी तर्जमा लिखें ना, तो क्या लिखेंगे, वो खड़े हो गए, हालांकि हम कह रहे हैं होंगे। तो अरबी का ये असूल है कि मुस्तकबिल में होने वाली बात को, फ्यूचर में होने वाली बात को पास्ट टेंस में जब बयान करें तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसको इंग्लिश की एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। दो लोग सौदा ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, वो कहता है मैंने 50 का देना है, वो कहता है मैंने 40 का लेना है। वो 40 पे 50 पे बार्गेन कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अखीर वो बोलता है ग्राहक, ओके डन, 45 पे राजी, डन डन डन, कहते हैं ना डन डन, तो डन क्या है, पास्ट है, यानी सौदा पक्का हो गया, अब तुम इसमें कुछ ना बोलना। ये डन डन जो है ना, यही बरस हुआ है कि ये बात हो गई, अब इसमें नो कलाम नो क्वेश्चन। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे बयान किया जा रहा है जैसे ये मामला हो गया। कब होगा ये, कब्रों से निकलते वक्त। फकाल अल्लज़ीन दुआ फकालत दुआ फाउल्लज़ीन अस्तकबरू, तो कहेंगे कमजोर लोग मुतकब्बिरीन से, क्या कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबन, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, हम तो तुम्हारे ब्लाइंड फॉलोअर थे, तुम्हारे पीछे चलते थे, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे। फहलन तुम मोहनून फहलन तुम मोहनून आन्ना मिन अज़ाब अल्लाही मिन शय, तो क्या आप अल्लाह के अजाब में से हमारे लिए कुछ कमी कर सकते हैं। अब बड़ों का जवाब सुनिए मुतकब्बिरीन का, कालू, अब वो बोलेंगे लो हदाना अल्लाह लहदैनाकुम, अरे भाई अगर हमें हिदायत मिली होती और अल्लाह ही देता। देखिए फिर इल्जाम अल्लाह पे लगा रहे हैं, तकब्बुर की हद है। अगर अल्लाह हमें हद दे देता ना हिदायत, तो हम भी तुम्हें देते। मतलब यह कि हम तो भटके हैं सनम, तुमको भी ले भटकाएंगे, कि हमें तो खुद हिदायत नहीं थी जब तुम्हें देते। आज तो एक बात है, सवाउन अलैना जज़ेना हम सबरना मालना मिन महीस, अब हमारे हक में बराबर है, ख्वाह हम जज़ा फ़ज़ा करें या सबर करें, हमारे लिए खुलासे की कोई सूरत नहीं। अब यहां इस आयत में देखिए ये दुआफा कौन है और मुस्तकबिर कौन है, बात तो वाजह है ना। दुआफा का लफ्ज़ ज़ईफ़ की जमा है, क्या इससे मुराद जिस्मानी ज़ईफ़ या उम्र के बूढ़े, नहीं, ज़ईफ़ के लफ्ज़ में यहां इल्म हैसियत मर्तबे में कमजोर लोग हैं, अक्ल में कमी, बाज लोग दीनी एतबार से जईफ होते हैं तो आंखें बंद करके दीनदारों के पीछे चलते हैं, जो वो हलाल को आराम करने कहते हैं ठीक है। अनपढ़ किस्म के लोग जिन्होंने ना नमाज भी ना पढ़ने वालों को बाजफ अपना पीर बनाया होता है, तहारत से दूर लोगों को अपना बुजुर्ग और अपना शेख कहकर गद्दी नशीनी और न जाने क्या कुछ कहते हैं, और पूछो कि इनका पर्दा क्यों खुला हुआ, कहते हैं जी ये पहुंचे हुए इनको होश ही कोई नहीं अपने सतर की, एक तो ये मुराद है। यानी जो दीन के नाम पे दूसरों के पीछे ब्लाइंड फेथ रखते हैं, अम्मा से लेकर सास से दादी से लेकर ये वक्त चलता आया कि कब्र पे जाके तो ये काम करते थे तो बहू बेटियों ने भी शुरू कर दिया। अब ऐसे वो सब जो अक्ल ना इस्तेमाल करें और बस आंखें बंद करके बड़ों के नाम पे लगे, एक तो यहां मुराद दुआफा से वो है और इस तकबरू से भी आप समझ गए, दूसरे लोग तो बड़े बनते थे। इसी तरह यहां अगर आप देखें तो दुआफा से मुराद वो लोग भी हैं जिनको हम अवाम कहते हैं, कॉमन मैन, ले मैन, और इस तकबरू से मुराद फिर हुक्मरान है, बुरे हुक्मरान जो अल्लाह के निजाम के खिलाफ दूसरे निजाम बनाते हैं। क्यामत के दिन बहुत सारी बहसें होनी है, उस दिन जो लोग दीन के मामलों में या दुनिया के मामलों में किसी के सामने आंखें बंद करके चले होंगे वो वहां अफसोस और हसरत कर रहे होंगे कि काश हम तुम्हारे पीछे आंखें बंद करके ना चलते, काश हमने दुनिया में जो किया था उसकी दलील ढूंढते। देखिए लोग आपसे पूछे ना आपका मजहब क्या है, आपका मसलक क्या है, पूछते ना फिरका क्या है, आपकी जमात क्या है, तो आपका फिरका, आपका मसलक, आपकी जमात दलील है। कहां से दलील मिलेगी? काल अल्लाह व काल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा आप गवाह हैं कि कभी इधर आपने ना तो किसी बुजुर्ग का नाम सुना है, ना उस्ताद का सुना है, ना मसलक का सुना है, ना इमाम का सुना है, ये सब सर आंखों पे है लेकिन बात कुरान और सुन्नत की है। अब ऐसे लोग चूंकि दुनिया में इन बड़ों के पास जाके अपनी बातें पूरी कराते थे, कब्रों पे जा जाके माथे टेकते थे, तो क्यामत के दिन की रुसवाई से बचने के लिए कहेंगे कि चलो जरा हमारे इस अजाब में कमी करा दो, तो वो कहेंगे अल्लाह के बंदो हम तो खुद गुमराह थे, तुम्हें कैसे हिदायत देते। यहां से पता चलता है ना कई ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनकी हिदायत की दुआ करने की जरूरत होती है। क्यामत के दिन आप देखिए ये सारे मंजर सबकी आंखों के सामने आने वाले हैं, इसलिए आज अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी फिक्र कर लें तो कल क्यामत की रुसवाई से बचेंगे। अब फिर आगे देखिए आज के आखिरी समय क्या कहते हैं, फालान तुम मिनरजा, यानी तुम जो कहते थे कि दुनिया में तुम हमारे पल्लू थाम लो, हम तुम्हें किफायत करेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम करनी वाले, हम दस्तगीर, हम मुश्किल कुशा, तो क्या आज तुम हमारी कुछ मदद करते हो? तो कहेंगे हम कैसे देंगे, लौला हदान अलौ हदान अल्लाह। देखिए इस जुमले में भी देखिए तकब्बुर इतना दिमाग में है कि अपने हिदायत पे ना होने का जिम्मा भी अल्लाह को दे रहे हैं, ये कहने के बजाय कि हाँ भाई अल्लाह ने तो हिदायत ऑफर की हमने ली नहीं, क्योंकि वही बात यहदी इलैहि मन अनाब, हिदायत तो उसको मिलती है जो रुजू करता है, तो रुजू इधर कोई नहीं था और इल्जाम अल्लाह पे लगा रहे हैं कि अल्लाह ने हिदायत की तौफीक नहीं दी, तो चलो आज फिर करें ना करें फायदा हो ना हो। अब यहां देखिए कि जहन्नुम में पहुंचाने के बाद अल्लाह इनकी हसरत को हमारे सामने ला रहा है, जहन्नुम में जब लोग पहुंचेंगे तो जहन्नुम की इंतजामिया को देखकर ये सब कुछ करेंगे जो अब यहां कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे जहन्नुम के दारोगा मालिक को पुकारेंगे, या मालिकु लियक्दी अलैना रब्बक, अपने रब से के हमें मौत दे दे, हमें सिरे से खत्म कर दे, हम जन्नत नहीं मांगते, हम नहीं कहते हमें अदन में ले जा या जन्नते नाइम दे दे, बस एक दफा इस जहन्नुम से हमें बचा ले, बल्कि वहां तो आते सिर्फ एक दिन हमारा अजाब खत्म कर दे, हमें सोना है, हमें एक दिन की ब्रेक दे दो। लेकिन वो पुकार के कहेंगे आज पुकारो ना पुकारो तुम्हारी पुकार का कोई जवाब नहीं है, जिधर जाना है चलो जो मर्जी करो। आप देखिए कि जो लोग बंदों को राजी करने के लिए रब को नाराज करते हैं ना, बिल आखिर रब तो नाराज हुआ ही, बंदे भी उनसे नाराज हो जाते हैं। किसी को आप खुश करें अल्लाह के लिए फिर देखिए अल्लाह आपसे कितना खुश होता है और वो बंदा आपसे कितना खुश रखता है। साल हर साल आप लोगों की खिदमत करते हैं और एक दिन किसी मजबूरी तकलीफ की वजह से आप इनकार करके तो देखिए ऐसे लगेगा कभी आपने उनके लिए कुछ किए ही नहीं है। तो वो लोग जो दुनिया में सिर्फ लोगों की खुशी के लिए रब को नाराज करते रहे उनको फिर वहां ये हसरतें होंगी। बिल्कुल जहन में ऐसे ही आता है कि जेल है और अंदर लोग जानवरों की तरह ठुसे हुए, और बाहर से कोई जेलर गुजरता है तो उसको देख के चीखते हैं, प्लीज हमें छुपा दो, हाय हाय कर दो। नहीं तो सवाल न ले ना, आज बराबर है, बोलो ना बोलो, सबर तो दुनिया में करना था, जिसने यहां नहीं किया उसको वहां करना पड़ेगा। आज दुनिया में जजा फजा करते, अल्लाह के आगे रोते, आहो जारी करते, आजजी करते, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुमने आज दुनिया में नहीं किया तो वहां तो करना पड़ेगा। रिवायत में आता है कि जहन्नमी जहन्नम में जब देखेंगे कि हर तरफ चीखो पुकार रोना धोना पड़ा हुआ है, तो वो कहेंगे आओ हम भी रोते हैं। आइए मैं आपको कुछ रिवायतें सुनाती हूँ, क्योंकि जब हदीस पढ़ी जाती है तो मैं सोचती हूँ कि जो उसकी बरकत है वो मेरी बात में नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन जैद फरमाते हैं, ये हदीस नहीं है बल्कि एक मुफस्सिर का कौल है, दोस्ती लोग कहेंगे कि देखो ये मुसलमान अल्लाह के सामने रोते धोते थे, इस वजह से वो जन्नत में पहुंचे, आओ हम भी अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, वहां जाके रो रहे हैं या नहीं रोए, खूब रोएंगे पीटेंगे चिल्लाएंगे लेकिन बेसुध रहेगा, कोई फायदा नहीं, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा उनके रोने का। तो फिर कहेंगे कि जन्नतियों में जन्नतियों के जन्नत में जाने की एक वजह सब्र थी, चलो आओ फिर हम सब्र करते हैं, आओ हम भी खामोशी और सब्र इख्तियार कर ले। अब ऐसा सब्र करेंगे कि ऐसा सब्र कभी देखा नहीं गया, यानी भीगी बिल्ली बन के, जैसे बच्चा नहीं पहले रोता है रोता है, देखता है कि माँ नहीं मान रही ना, फिर चुप करके बैठ जाता है कि शायद माँ को मेरी खामोशी पे प्यार आ जाए, लेकिन ये भी ला हासिल रहेगा। उस वक्त वो कहेंगे हाय सब्र भी बेसुध और बेकरारी भी बेनफा। अल्लाह अकबर, जो काम आज करना था वो कल किया तो क्या फायदा हुआ? इसलिए ऐसे लोग एक दूसरे पे लान करेंगे तान करेंगे। एक आयत में पीछे पढ़ चुके हैं, कालु उदखुलू फी उममिन, जाओ सारे ग्रोहों में चले जाओ, जो पहले से जहन्नम में थे तुम भी जाओ, और जो जाएगा वो दूसरे गिरोह को लान तान कर रहा होगा। इसी तरह एक जगह था, रब्बना इन्ना अतौना सादतना व कुबराना, ए अल्लाह हमने तो अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों और पेशवाओं की इताअत की थी, उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया, ए हमें पालने वाले अब इनको दोहरा अजाब दे और बड़ी लानत कर। इसी तरह एक जगह आता है, महशर में लोग खड़े झगड़ रहे होंगे, इज़ ज़ालिमून मौकूफून इंद रब्बिहिम, जब जालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, और वहां ताबेदार और बड़ों के बीच में जो मुकालमे वो इसी से मिलते जुलते हैं। अब ये सारे मंजर ज़हन में रखिए, क़यामत के मैदान में ऐसे नहीं लग रहा कि हाल दो हाल पड़ी हुई है, रोना धोना पड़ा हुआ है, कोई मौत वाला घर हो गया, चीखो चारी और रोना धोना। दुनिया में कोई भी गम आता है, कोई बीमारी चोरी चिकारी, तो आप सोचिए घर का माहौल क्या बन जाता है, ना पहनने को दिल करता, ना खाने को दिल करता, ना बोलने को दिल करता। क्यामत के दिन भी ये सब कुछ उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने अपनी जिंदगियों का मकसद नहीं समझा, बिल हक को छोड़कर ना हक के पीछे पड़ते रहे और वहां जाके अपने आप को बहुत जाया किया। अब ऐसे वक्त में सबसे बड़ा धोखेबाज खड़ा होगा। अब आप अगली आयतों को सुनने से पहले अपने आप को मैदाने मक्षर में रखें। वाकयात में आता है कि जब लोग मैदाने मक्षर में खड़े होंगे तो नेक लोग अंबिया कराम को सिफारिश के लिए बुलाएंगे। हदीस पढ़ के बाद मैं बताती हूँ, सिर्फ आयत का खुलासा करके फिर आगे चलेंगे। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ होंगे और उनकी पेशकदमी जो है वो समझें कि उनकी तरफ से नबी और बड़े नेक लोग कर रहे होंगे। जो गुनाहगार लोग होंगे उनको लगेगा कि हम किसको बड़ा बनाएं, तो लिहाजा वो इबलीस के पास जाएंगे और इबलीस से जाके फिर सिफारिशें कराएंगे करेंगे कि देखो भाई हम तो तुम्हारे कहने पर जो भी गुनाह सुना करते आए आज हम पकड़े हुए हैं, तुम हमारी मदद करो। तो इन इस फरमाइश को सुनकर इबलीस क्या करेगा, आयत नंबर 22 और इससे अगली आयतों में इबलीस की स्पीच है, मुकालमा जो क्यामत के दिन उसकी जुबान पे होगा। वकाल शैतानो, और शैतान कहेगा, कब कहेगा, लम्मा कुदी अलमरू, जब फैसला चुका दिया जाएगा। इससे क्या मुराद है, लम्मा मैंने लन और मा दोनों मिल गए तो लम्मा बन गए, इससे मुराद है जब सब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जाने के फैसले सुन चुके होंगे, इससे ये मुराद है। क्योंकि मैदान मक्षर में रिपोर्ट कार्ड तो मिल ही जाने हैं ना। अब प्रैक्टिकली वो दाखिल किए गए कि नहीं किए गए कोई फर्क नहीं पड़ता, अनाउंसमेंट हो गई है कि इन्होंने जहन्नुम में जाना है और इन्होंने जन्नत में जाना है। सब इंसानों की किस्मतों का फैसला हो गया। अब शैतान के अल्फाज जहां से शुरू होते हैं आप हाईलाइट कर लें, इन अल्लाह वादकुम, लोगों देखो अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, वादल हक की, और वादा वो सच्चा था, यानी अल्लाह ने तुमसे एक सच्चा वादा किया था, वादतुकुम, और मैंने भी तुमसे वादे किए थे, लेकिन फाखलफतुकुम, फाखलफतुकुम, बस मैंने तुमसे अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। पहले तो नोट कीजिए कि अल्लाह के वादे को सच्चा करार दे रहा है, और दूसरी बात क्या है कि अल्लाह के वादे के मुकाबले में अपने वादा करने को पेश कर रहा है, और तीसरी बात इकरार कर रहा है कि किए तो थे मैंने वादे लेकिन मैंने वो वादे पूरे नहीं किए। क्या वादे किए थे शैतान ने, किसी को याद आई सूरत निसा की आयत? जी बताइए। यईदु हम व युमन्नी हम वला आमुरन्न हम वला युबर्ति कुन्ना जान लनामी। पांचवें चौथे पारे के आखिर की आयत है ये, पांचवें पारे के आखिर है, नंबर उसका चेक करके बता सकते हैं आपको। शैतान के वादे क्या हैं, सूरह बकरा में भी आया, यईदुकुम, और शैतान क्या करता है, यईदुकुम अल फक्र वल फक्षा। तो शैतान के वादे क्या थे कि गुनाहों के साथ जन्नत है, कुछ भी करो मौज करो मस्ती करो, बार बार थोड़ी जीना है। शैतान हुक्म नहीं देता, यहां लफ्ज नोट कीजिए, ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया, बल्कि क्या कह रहा, वादा दिया, और वादे के लफ्ज में उम्मीद होती है, और साथ खुद ही पे डांट रहा है, वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, देखो तुम पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था, सिर्फ मैं तुम्हें कॉल देता था, और लफ्ज इनवाइट से पता चल रहा है कि वो खूबसूरत तरीके से दावे देता था, दावत देता था, दावत कैसे दी जाती है, भोंडे तरीके से। इसी तरह शैतान गुनाहों को मुजयन करके दावत देता था, दूसरी बात ख्वाहिशात पैदा करके दावत देता था, हराम कामों को खूबसूरत बना के दावत देता था, फिर इसी तरह दूसरों के खिलाफ ख्यालात डालता था, देखो इसने तुमसे ये किया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हारा हक नहीं दिया, तुम्हारी कदर नहीं की, ये करो, और उसकी बातों में आके हम बिल्कुल सब चीजों को पीछे कर देते हैं। हाँ मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं था, यहां से पता चल रहा है कि शैतान हमारे मुकाबले में कितना बेबस है। हाँ इल्ला दाउत तुम फस्त जब तुम ली, सिवाय इसके कि मैंने तुम लोगों को दावत दी और तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया, तुम्हें शौक ही बहुत था दावत कबूल करने का, और खास तौर पर शैतानी दावत तो तुमने कर ली। फला तलूमोनी वलूमो अनफुसकुम, बस अब मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। अल्लाह के सारे हुक्म तुम्हारे सामने थे, उसके रास्ते तुम पर खुले थे, उससे रूगरदानी करके तुम लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे रास्ते को चूज किया, मैं तुम्हें जबरदस्ती खींच कर तो नहीं लेके आया, बस आज मुझे ना कोसो, खुद को लान तान करो, माना भी मुसरिखिकुम, आज मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता। जो लफ्ज है ना मुसरिखी, स्वाद राहा से सरहन चीख को कहते हैं, सूरह यासीन में भी आप पढ़ेंगे ना, फला सरी हलो, कोई चीख नहीं होगी, यानी उनकी चीखें सुनने वाला क्यामत के दिन कोई नहीं होगा। तो यहां मुराद यह है कि तुम, और लफ्ज इसका मान ये होता है सुराख करना, तो जब बहुत जोर से कोई चीखता है तो कानों में सुराख होता है ना, तो फरियाद सुनने के मानों में, यानी आज तुम्हारा फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, ममान तुम भी मोसरेश, और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच रहे हो, यानी जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे साथ तो उससे भी बुरा हो रहा है। इन्नी कफर तो भी माशरब तुम मिन कब, बिला शुबा मैं इनकार करता हूं इसका जो इससे पहले तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते थे। देखिए सारी जिंदगी हम शैतान के ही आस में गुनाह करते रहे कि उसको पकड़ाएंगे, शैतान बुरा बनेगा, वो एक जुमले में कह रहा है तुमने मेरे मेरे कहने पे जो कुछ भी गलत काम किया आज मैं उसका इनकार करता हूं, तुमने अल्लाह की बातें छोड़कर मेरी मानी आज मैं इसका इनकार करता हूं, जो कुछ किया वो गलत था, तुम लोगों को अल्लाह के काम मानने चाहिए थे, तुम मेरे वादों पे चल पड़े, तुमने अल्लाह की बातों को पसे पुश डाल दिया, मेरे आगे चले, कोई बात नहीं, ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या बुरा अंजाम है उन लोगों का कि जो इबलीस के पीछे चले और इबलीस की बातों को माना। अब ये देखिए कि मंजर सामने आंखों के आता है, इसके बारे में रिवायत भी है कि शैतान का ये मामला कब होगा, कैसे होगा। चंद रिवायतें आपके साथ शेयर करूंगी। यदि जो तोता चश्मी उस दिन शैतान करेगा वो कोई नहीं कर सकता। सब्ज बाग दिखाता रहा जिंदगी भर और उसके सब्ज बाग किसी को पूरे न हुए। इतने अभी हातिम की रिवायत सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अगले पिछलों को अल्लाह ताला जमा करेगा, मुराद कयामत का दिन है, और इनमें फैसले कर देगा, फैसलों के वक्त आम घबराहट होगी। किसी भी रिजल्ट के सुनने की घबराहट तो होती है ना। मोमिन कहेंगे, हम में फैसले हो रहे हैं, अब हमारी सिफारिश के लिए कौन खड़ा होगा। बस हजरत आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत ईसा फरमाएंगे, नहीं नहीं नबी उम्मी के पास जाओ, चुनाचे वो मेरे पास आएंगे। यानी नबी सल्लम के मुझे खड़ा होने की अल्लाह तबारक ताला इजाजत देगा। इस वक्त मेरी मजलिस से पाकीज़ा तरीन और उम्दा खुशबू फैलेगी कि इससे बेहतर खुशबू और उम्दा खुशबू कभी किसी ने ना सूंघी हो। इमेजिन करें, नबी सल्लम तो मदीना की गलियों से जहां गुजर जाते थे तो वहां खुशबू आती थी। आपको पता, लोग अल्लाह के नबी को कैसे पहचानते थे? आईफोन, सेलफोन सारे ऐसे रहते थे, अब किधर है, अब क्या हो रहा है। नहीं, कहते हैं कि हम मदीना की गलियों की खुशबू से पहचानते थे कि आप इधर से गुजर कर इधर जा रहे हैं। लोग उस खुशबू के पीछे जाते हैं और आपको पा लेते हैं, तो वहां क्या खुशबू होगी। कहते हैं कि मैं चलकर रब्बुल आलमीन के पास आऊंगा, मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पाओं के अंगूठे तक नूरानी हो जाएंगे। अब मैं सिफारिश करूंगा। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी की सिफारिश नहीं है। कौन कहता नहीं है? खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं सिफारिश करूंगा और जनाबे हक तबारक को ताला उसको कबूल फरमाएंगे। ये किस चीज की सिफारिश है आपको पता? हिसाब शुरू होकर, यानी हिसाब जो भी मामला हो रहा है उसमें आसानी की सिफारिश। ये देखकर काफिर लोग कहेंगे कि चलो भाई, हम भी किसी को सिफारिशी बनाकर चलें, और उसके लिए हमारे पास सिवाय इब्लीस के और है ही कौन, क्योंकि इसी ने हमको बहकाया था। चलो जाके उसी के सामने अर्जी पेश करते हैं। आएंगे इब्लीस से कहेंगे, मोमिनों ने तो शफी पा लिया, अब तू हमारी तरफ से शफी बन जा, इसलिए कि हमें गुमराह भी तो तूने ही किया है। यह सुनकर ये मलऊन खड़ा होगा, इसकी मजलिस ऐसी गंदगी बदबू फैलेगी कि इससे पहले किसी नाक में ऐसी बदबू ना पहुंची। फिर वो बात कहेगा जो अभी इस आयत में गुजरी। देखिए, कौन किसके पीछे चलता है उसी के साथ जाएगा। मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि जब जहन्नमी अपना सब्र और बेसब्री यकसा बतलाएंगे, पिछली आयत में जिक्र गुजरा, इस वक्त इबलीस इनसे ये कहेगा, इस वक्त वो अपनी जानों से भी बेजार हो जाएंगे। निदा आएगी कि इस वक्त की इस बेजारी से भी ज्यादा बेजारी अल्लाह की तुमसे उस वक्त थी जबकि तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे। ये कुरान में एक जगह और पढ़ेंगे कि आज जहन्नमी अपनी जान से बेजार है, तो कहा कि जब अल्लाह तुम्हें अच्छे कामों की तरफ बुलाता था और तुम नहीं आते थे तो अल्लाह को भी तुम पे ऐसे ही गुस्सा आता था। आमिर शैफी कहते हैं कि तमाम लोगों के सामने उस दिन दो शख्स खुतबा देने के लिए खड़े होंगे, एक हजरत ईसा बिन मरियम। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बनाना। सूरह मायदा की आखिरी आयतें याद कर लें। और दूसरा इबलीस खड़ा होगा और माँ कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, ये कलाम जो इधर है वो वहां होगा। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये सब कुछ तो हो रहा है उनके साथ जिनकी जिंदगियां बातिल पे थी, अब इसके बरक्स नेक लोगों का इंजाम। आयत 23, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे, ऐसे बागों में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, वो इसमें रहेंगे हमेशा हमेशा अपने रब के हुक्म से। तहियतुहुम फीहा सलाम, वहां इनकी मुलाकात की दुआ एक दूसरे पर सलाम होगी। ये है असल में खूबसूरत अंजाम। सारी जिंदगी आप देखिए कि मोमिन सलामतियों का पैगाम देता है, सलाम सलाम, तो वहां भी सलाम। कौन किसको सलाम करेगा? जन्नती आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे। तहिया कहते हैं वक्ते मुलाकात, ग्रीटिंग जिसको आप इंग्लिश में कहें। फिर फरिश्तों का सलाम और फिर अल्लाह का सलाम, कौलम में रब्बी रहीम। लेकिन वो लोग तो दुनिया में सलाम के आदि कोई नहीं, वो कैसे कहेंगे? देखिए जो शख्स कभी ना भागा हो, जब जरूरत पड़े तो वो भाग भी नहीं सकता, वहां भी हो सकता है हाय बाय ही होगा। तो याद रखिए कि सलाम करना इस्लाम का कल्चर है, लेकिन अफसोस कि आज हम इस कल्चर से शर्मिंदा हैं। हमें शर्म आती है किसी को सलाम कहते हुए। लोग कहेंगे ये मौलवी लग रहा है, मुल्ला लग रहा है। हदीस में तफशु सलाम अबैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। आज कहते नहीं सलाम किया तो पता चल जाएगा मुसलमान है। हम खौफ खा जाते हैं उन लोगों से जो जरा किसी पब्लिक प्लेस पे हमें इस्लाम के नाम से देख लें। ऐसे नहीं लगता कि जन्नत में जाने के सारे नुस्खे हमने फेंक दिए और फिर कहते हैं जाना जन्नत में ही है। क्या करें, बचपन से बच्चों को सलाम की आदत डालें। वो जवाब नहीं देते, आप जवाब दें उनकी तरफ से। और शायद शैतान से दूर रहे बच्चे सलामती की दुआओं से। आप कह लें कि जन्नत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई बंदा किसी से जेलस फील नहीं करेगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको वहां ले जाए, और जब हम वहां जाएं तो फिर वहां की वो सारी बहारें और खैर पाले कि जिसकी यहाँ बात है। यहाँ पे अब एक बुनियादी हिस्सा पूरा हुआ। सारे सबक को पढ़ते हुए मैंने तो अपने आप को मैदाने मक्सर में महसूस किया। ऐसे लगता है कि जैसे स्क्रीन पे मुख्तलिफ चीजें चलती जाती हैं। एक और दूसरी बात, शैतान जो बातें देता है ना, उनको जरा आज दुनिया में अपनी आंखों के सामने रखें बगैर दलील के। आज आप किसी की भी जुबान से ये बात सुने, अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ करेगा। आप सोच लें कि अल्लाह ताला का नहीं, ये शैतान का जुमला सिखाया हुआ। गुनाहों के साथ अल्लाह गफूर रहीम नहीं है, गुनाहों पे तौबा के साथ गफूर रहीम है। सरकशियों के साथ अल्लाह गफूर रहीम नहीं है, अल्लाह ताला इताअत और फरमा बरदारी के साथ है। तो लिहाजा इंसान शैतान जो है ना, ये मुख्तलिफ इंसानों के रूप में आता है, ख्वाहिशात पैदा करता है, गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाता है। तो लिहाजा ऐसी सारी चीजों को सुनते वक्त हमें अपनी फिक्र करनी है कि क्या हम उस जन्नत में जाएंगे। और आप देखिए कि एकदम शैतान की बातों के बाद मैं जन्नतियों का जिक्र सुन के ऐसे लगा मुझे, बिल्कुल फीलिंग में आया कि कोई बहुत खौफ खा रहा था, बाहर खड़ा है, उसके पीछे चोरी चोर है, कोई कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और कोई अपना दरवाजा खोल दे, कम इन साइड। हत्ता इजा फुतिहत अबवाबुहा, जब वो जन्नत के करीब जाएंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे, और वहां दरवाजे पे एक बड़ा खूबसूरत वेल एटिकेटेड शख्स खड़ा है और कहता है सलाम सलाम, आ जाओ अंदर। इसी तरह एक जगह आता है दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम। तो अल्लाह हमें इस इस्लाम की कदर की तौफीक दे। इसके बाद आयत नंबर 24 से 26, दो मिसालें हैं। कुरान पाक का मिजाज तमसीली है। तमसीली किसको कहते हैं? एग्जेम्पलरी, एग्जाम्पल दे के, जैसे एनालॉजी से कल से समझ लें तो मैं नहीं भूलती। इसलिए पहले इनका खुलासा करेंगे। बहुत कुछ है इन दो आयतों में, इस पे मैंने चार चार दिन के भी सेशन दिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वेबसाइट पे आप जाए पुराने लेक्चर्स में, तो फ्रूट्स ऑफ ईमान एक सीरीज है, 22 फ्रूट्स ऑफ ईमान, इसी इन्हीं आयतों पे, यानी शायद मैंने सबसे ज्यादा इन्हीं आयतों पे दर्स दिया। लेकिन आज हम इसको तफसीर के एंगल से और खास तौर पे इस एंगल से पढ़ेंगे कि अब हम कुरान के साथ जुड़ गए तो अब हमें दीन इस्लाम की किस चीज को कितनी अहमियत देनी है, कहाँ लेना है। क्योंकि बास दफा हम फराइज को पीछे डाल के नवाफिल के पीछे भाग रहे होते हैं, और बास दफा हराम हमारी जिंदगी में आम होता है और हलाल की कदर नहीं है। तो आइए जरा आयत को खुलासे के साथ देखते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला शऊर को बेदार करते हैं हमारे और कहते हैं अलम तारा, क्या नहीं तुमने देखा। वही मतलब है, गौर करो, ये अंदाज आपको कुरान पाक में बहुत जगह। इधर क्या है, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा। क्या कई फदरबल्लाहु मसलन, कैसे बयान करता है अल्लाह मिसाल, किसकी, कलीमतन तैयबा, कलिमा तैयबा की। कलिमा तैयबा से यहां क्या मुराद है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? आप देखिए कि कलमे तैयबा जो हमारे कल्चर में भी जो 6 कलमे मारूफ है ना, उसमें पहले कलमे को क्या कहते हैं? पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। बचपन से जुमला सुनना ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। कलमे तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, मुसलमान इस कलमे को पूरा कैसे पाते हैं? मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह के, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सवाल पैदा होता है कि इसको कलमे तैयबा क्यों कहते हैं? इसलिए इस कलमे को पढ़ते ही दिल पाक हो जाता है, कुफर की, निफाक की, हराम की, गुनाहों की आमेजिश से ना सिर्फ ये कि जुबान पाक होती है बल्कि दिल बदलता है, दिल पाक हो जाता है। और अगर दिल पाक नहीं तो फिर वो कलमा ऊपर ही ऊपर है, अंदर नहीं है। तो कोया के हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अफसलो जिक्र। लेकिन अगर आप देखें तो यहां सिर्फ इससे मुराद ये लिप सर्विस कलमा नहीं है, बल्कि इससे मुराद तौहीद पर मबनी अकायद, नजरियात और भलाई की हर बात, तैयब कलाम, हक की दावत, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, ये सब कलमा तैयब है। क्योंकि जिसके दिल में खुद अल्लाह की बड़ाई आ जाएगी वो ये सारे काम करेगा। खैर, कित कैसा है ये कलेमा तैयबा? का शजरतिन, एक दरख्त की तरह। कैसा है वो? तैयबा, दरख्त पाक भी है, क्लीन एंड क्लियर दरख्त है, साफ सुथरा। असलुहा साबितुन, दूसरी ये नंबर 2 लिख लीजिए, इसकी 4 सिफात आ रही हैं। पहली क्या है? शजरतिन तैयबा, पाकीज़ा दरख्त है। दूसरी इसकी कैफियत है असलुहा साबितुन, इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रांग है। असल अरबी जुबान में कहते हैं रूट को, असूल भी इसी से है। जो रूल्स होते हैं ना वो किसी भी इदारे की जड़ें होते हैं, किसी भी घर के रूल्स, किसी भी इंसान के जो रूल्स हैं ना उसको डिफाइन करते हैं। बहुत सोचना चाहिए क्योंकि उसी की बेस पे आपकी इमारत बनेगी। तो गोया के असल, असूल, जड़ें, साबित मैंने सबता गड़ी हुई, डीप रूटेड के मानों में इधर लिख लीजिए। तीसरी कैफियत क्या है इसकी? वफर उहा फिसमाई, और इसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। फरा कहते हैं ब्रांच को, ठीक है, फरा, उसी से फिर जमा फरुआत। आपने कभी कोई किताब पढ़ी हो इस्लामिक कलमा, इस्लामिक फिक पे, तो उस पे होता है फरुआत, असल को छोड़कर फरुआत में पढ़ना। मतलब यह है कि असल इश्यूज को छोड़कर साइड इश्यूज में उलझना। तो यहां इससे मुराद फरुआत से क्या है? दरख्त के अंदर जो झाड़, बड़ी बड़ी, यानी बहुत ज्यादा झाड़ है, नीचे से वो दरख्त डीप रूटेड है, नीचे उसकी जड़ें फैली हुई है, फिर स्टेम पे, लेकिन उसके बीच में ऊपर उसका दरख्त के ऊपर क्या है? एक के शेल्टर है, बहुत ज्यादा उसका साया है। चौथी दरख्त की खूबी क्या? अगली आयत में तू ती कुल्हा कुल्लहीन बेजनी रब्बीहा, ये दरख्त हर फसल में अपना फल लाता है लेकिन अपने रब के हुक्म से। यानी माली या किसान नहीं ये कर सकता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से फल भी आता है, यानी सदाबहार है। ये लिख लीजिए, गर्मी सर्दी का, धूप छांव का उस पर असर नहीं होता। बस मिसाल खत्म हुई और कह दिया वयद्रिबुल्लाहुल्लमसालिन्नास। अल्लाह ताला मिसालें देता है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत अखज करें। अब इस आयत से आपको क्या समझ आया? आप देखिए कि एक दरख्त को उगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बीज की। लिखिए ऐसे एक तरतीब से लाइन बना ले, फिर उसके आगे हम लिखेंगे। नंबर 1 बीज, नंबर 2 जमीन जहां बीज डलेगा, फिर नंबर 3 हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ठीक है। बीज क्या है? ईमान। अब इनके आगे फिलिंग करें। ईमान का बीज होता है। मट्टी क्या है? मोमिन का दिल, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आती है। फिर उसके बाद पानी क्या है? वही का पानी, अनजल ना हो मिनस समा, इल्म का पानी जाता है। तो ईमान का बीज जल्दी उठता है। रोशनी किस चीज की है? माहौल या रोशनी आप कह लीजिए, कुरान और अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी। हवा चाहिए होती है जिसको आप सोहबत करते हैं, आपके अराउंड कैसे लोग हैं। जब ये सब चीजें जमा होती हैं तो एक दरख्त शुरू में कैसा होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे अगर आप देखिए कि आपने कभी भी गार्डनिंग की हो, एक छोटे से बीज से आपका सफर शुरू होता है और बाद में एक इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कभी ये दरख्त इतना बड़ा होगा। और फिर आप उसके बाद तो आपको उसके अंदर क्या कुछ दिखता है, इतना बड़ा दरख्त बनता है। मैं अक्सर सोचती हूँ जब भी कभी दरख्तों को देखो, और मेरा फेवरेट शुगल जो है ना वो दरख्तों को देखना है। लोग फूलों को देखते हैं, मुझे फूलों में फूल तो एक लगता है, लेकिन जो दरख्त है ना वो मुझे ऐसे लगता है कि फूलों का एक गुलदस्ता है। आप अगर इस चीज पे गौर व फिक्र करके देखें, अच्छा तो ये आके जरा इरम चलाइएगा स्क्रीन को, ये मैंने डिस्कनेक्ट की थी, कि जब कोई भी बीज दरख्त बनता है तो उसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं। आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर उसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। और इसमें अब इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाना चाहिए कि इस्लाम किधर से शुरू होता है और कहाँ पहुंचता है। अच्छा, इसको उतार के फिर करेंगे। ओके, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन है, लेकिन आप इसको दोबारा को अनप्लग करके आप देखिए कि दरख्त को बीज से दरख्त बनने तक के मराहल को ले लें, यही ईमान के मराहल होते हैं। जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों पे आएंगे कि जिसको अल्लाह सुबहान आपके लिए आम किया है, उतना आप इससे फायदा उठाएंगे। ये देखिए एक प्रेजेंटेशन है, आपको नेट पे कहीं भी गूगल में डालेंगे ना इस्लाम ए टू जी नूरुल कुरान के नाम से, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? ये है मट्टी, मोमिन का दिल, बीज अल्लाह की मोहब्बत या जिसको ईमान कहेंगे, ये जो पानी दिया जा रहा है ये इल्म और हिदायत का वही इलाही। ठीक है, पौधे को पनपने के लिए अच्छे बीज, जरखेज जमीन, उम्दा खाद, पानी और सूरज की जरूरत होती है। इनमें से कोई एक भी चीज ना हो ना तो आप देखते हैं कि पौधा नहीं चलता। इसके बाद क्या होता है? ये देखिए, वो बीज किधर बदला? उसमें सबसे पहले जड़ बनी, असलुहा साबितुन। ये देखिए एक बीज की इतनी जड़ें हैं, ये जड़ें जैसे इनके अंदर जाती है ना, इसी तरह दिल में अकीदे की सूरत ढलती है। यानी आप लिख सकते हैं कि जड़ों से मुराद अकीदा है। अलबुग्जु फिल्ला, अलहुब्बु फिल्ला, इसको तीन हिस्सों में आप लिख लें, ताल्लुक बिल्ला, ताल्लुक बिर रसूल और ईमान बिल आखिरा। जितना ये मजबूत होगा उतना आपका अमल सवाले का दरख्त बनेगा। मक्का के 13 साल में जो दीन सिखाया गया ना वो जड़ों को मजबूत करने वाला था। जब जड़ मजबूत होती है ना तो फिर दरख्त बड़ी बड़ी आंधियों में भी खड़े रहते हैं। इतनी मारे खाई, इतना इस्लाम के ऊपर इस्लाम पर जुल्म सहा, सहाबा क्यों नहीं हिले? क्योंकि असलुहा साबित हो। जब तक दीन की जड़ें दिल में नहीं आएंगी कभी अमल सवाले नहीं लगेगा। हम इसको तकाबुल करेंगे बाद में, मोमिन और दरख्त का, लेकिन यहां सिर्फ इसको समझिए। फिर आप देखिए कि ये पतली सी डंठल है ना, अब ये निकली इसमें से। आपने किसी को भी तबलीग करनी है, अपने बच्चों को, शोहर को, नॉन मुस्लिम्स को, मेट्स को, किसी दुनिया के बंदे को, जिसमें आप खुद भी कह लें, अगर आप दीन की तबलीग करें तो सिर्फ इन तीन मौजूदात पे बात करें। आखरत की बात, मरना जीना, अल्लाह से प्यार और रसूल की अहमियत। क्योंकि जिसके ये तीन काम पक्के हो गए ना, फिर आगे देखिए क्या होगा। फिर आप देखिए कि इस छोटे से बीज ने किस तरह बाहर निकल कर इजहार किया अपना। पौधे को बाहर निकलने के लिए मुनासिब माहौल की जरूरत होती है ना, तो इसीलिए ईमान नेकियों के माहौल में पलता फूलता है। इसके बाद का मरहला देखिए, ये जरा दरख्त की जड़ें देखें कहां तक चली गई, लोहा साबित। वक्त के साथ साथ जितना दरख्त ऊपर बढ़ रहा होता है ना उतनी उसकी शाहें जमीन में फैल रही होती हैं। ईमान बढ़ने के साथ साथ इंसान के दिल में अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत और आखिरत पर यकीन मजबूत होता है। जो आयत में असलुहा साबित है, ये आयत भी देखिए, पिक्चर उसकी बेहतरीन तस्वीर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जड़ें ऐसे पकड़ के बंदा मोमिन के दिल को जकड़ लेती हैं। ये काम करते हैं आप, अगर आपने बच्चों को संवारना है, शोहरों को बदलना है, बीवियों को इसलाह करनी है, मुआशरे को ठीक करना है, सिर्फ आप लोगों के दिल पकड़ लें। और उसमें दिल पकड़ने में वही बात जो पीछे हमने देख ली कि अल्लाह, उसका रसूल और उसकी भी आखरत, ये तीन चीजों पे काम करें। मत कहें नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, क्योंकि एक दफा जब ये दिल में आ गया, फिर यही पूछेगा इंसान कि अल्लाह क्या चाहता है, रसूल को क्या पसंद है और मेरी आखरत में क्या काम आएगा। इसके बाद आप देखिए कि ये दरख्त में से तना बना। इस्लाम के दरख्त में तने की हैसियत इबादत की है, दीन के बुनियादी हिस्से। अब आप देख रहे हैं नीचे क्या था, अकीदा। सेकंड फेज है दीन का इबादत, जिसको रिचुअल्स कहें। इसमें नमाज, रोजा, हज, जकात, दुआ, जिहाद, ये सब आते हैं। जितनी दिल में मोहब्बत की जड़ें पक्की हैं, हज जकात पक्के। क्यों सहाबा को नहीं कहना पड़ता था नमाज पढ़ो, जकात दो, हज करो? क्योंकि नीचे जड़ें ही मजबूत थी। जड़ खुद वो काम करा लेगी जो आप भूल के नहीं करा सकते। तो गोया के अगर जड़ ना हो तो नमाज मुश्किल लगती है जी, सब कुछ ही मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद आप देखिए तीसरी चीज ऊपर जाके, ये देखिए शाखें शुरू हो गई। शाखें क्या है? मामलात। ये दीन का तीसरा बुनियादी हिस्सा है, डीलिंग्स विद अदर्स, डीलिंग विद अदर्स, लोगों के साथ। इसको आप हकुकुल इबाद भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये शाखें जो हैं, ये लोगों से मामले, कौन कितना दीनदार है इसका पता उसके लोगों से मामले से पता चलेगा। नीचे अल्लाह की मोहब्बत थी, इजहार हुआ इबादात की सूरत में, और उसका दुनिया में निफाज होगा मामलात की सूरत में। ये बंदा मामला कब अच्छा करेगा लोगों से? जब इसकी इबादत स्ट्रांग होगी। और इबादत कब करेगा? जब अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। फिर उसके बाद देखिए पत्ते लगते हैं। पत्तों का काम क्या है? फिजा में से कार्बन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये मोमिन की नेकियां, इखलाकियात। ये चौथा, हमारा दीन चार चीजों पे मिलता है, अकायद, इबादात, मामलात और इखलाकियात। सदका खैरात खैर लाता है। ये दरख्त क्या दे रहा है लोगों को? फ्रूट्स दे रहा है। ये देख रहे हैं कहीं पियर लगी है, कहीं इसमें चेरीज लगी हुई है, कहीं केले लगे हुए हैं ना, ये मोमिन के फ्रूट्स होते हैं। पौधा जब तनावर दरख्त बनता है ना, तो ना सिर्फ ये कि माहौल की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि धूप में छांव देकर ठंडक भी फराहम करता है। इसी तरह मोमिन भी दूसरों के लिए ठंडी छांव होता है। लोग मोमिन की मौजूदगी में बहुत कंफर्ट पाते हैं, घबराहट नहीं हो जाती कि अभी हमें कोई ताना ना दे दे, कोई चुगली ना कर दे, कोई इल्जाम ना लगा दे। मोमिन पीसफुल होता है, लोग उससे थ्रेट नहीं फील करते। उनको पता है कुछ भी हम कर दें, लेकिन ये हमारे साथ अच्छा ही रखेगा अपना मामला। दरख्तों के पत्ते आप देख लीजिए कैसे कायनात को ऑक्सीजन देते हैं। मोमिन भी अपनी जात से अमर बिल मारूफ करता है। अब अगर इसको सामने रखते हुए अपने नोट्स में आप एक कॉलम बनाएं, एक साइड पे लिख लें बंदा मोमिन और दूसरे पे लिख लें दरख्त, हम थोड़ा सा टैली करेंगे कुछ चीजों को। दरख्त और मोमिन की मिसाल मिलती है, और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की मिसाल एक दरख्त की है। बुखारी की रिवायत इब्ने उमर से, आपने फरमाया कि वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबे है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते, हर मौसम में फल देता है? तो सहाबा कराम खामोश हो गए। रिवायत इसमें बहुत ज्यादा आती है, उसमें से एक आधी रिवायत ही सुना के तकाबुल दूंगी। बुखारी की रिवायत है इब्ने उमर से, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे, आपने फरमाया मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान के मुशाबे है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते, ना जाड़ों में ना गर्मियों में, जो अपना फल हर मौसम में लाता रहता है। इब्न उमर कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं कह दूं कि वो खजूर का दरख्त है। लेकिन मैंने देखा कि इस मजलिस में अबू बकर हैं, उमर हैं, और वो सब खामोश हैं, तो मैं भी चुप रहा। फिर अल्लाह के नबी ने खुद ही फरमाया कि वो दरख्त खजूर का दरख्त है। जब यहां से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद यानी उमर से कहा, अब्बा मुझे पता था, अब्बा मैंने भी यही सोचा था। तो हजरत उमर बोले, प्यारे बच्चे, अगर तुम ये जवाब दे देते तो मुझे तो तमाम चीजों के मिल जाने से भी ज्यादा महबूब था। सुभान अल्लाह, कि मेरे बच्चे को अल्लाह ने इतनी समझ दी कि जो नबी के दिल में था वही बात उनको समझ आ गई। बस जो आयत में तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए चुप रहा कि मैं इस मजलिस में कम उम्र था। तो क्या पहली बात पता चली कि अगर आपको कोई बात सब कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहिए कि हम छोटे हैं और दूसरे बहुत बड़े हैं। अब आप यहां देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इब्ने अबी हातिम में किसी ने, आप तो दरजात में बढ़ गए। आपने फरमाया कि याद रखो, अगर तमाम दुनिया की चीजें लेकर अंबार लगा दो तो भी वो आसमान तक नहीं पहुंच सकते, यानी कितना भी माल सदका कर दो कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तुझे ऐसा अमल बताऊं जिसकी जड़ मजबूत और जिसकी शाखें आसमान में है। पूछा वो क्या है? तो फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार कह लिया करो, जिसकी असल मजबूत और फरा आसमान में। कभी हम इन नेकियों की अहमियत देते? नमाज ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, सलाम फेरने से पहले सर पे लोग सवार होते हैं। कितने लोग हैं जो ये 33 वाली रिवायत पे अमल कर पाते हैं? मुश्किल हो जाता है यकीन करें 33 भी पढ़ना। और इस रिवायत में क्या, 10 बार अगर पढ़ लो तो ये अमल सारी चीजें सदका करके अंबार लगाने से भी बड़ी नेकी है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो पाकीजा दरख्त जन्नत में है, हर वक्त अपना फल लाए, यानी सुबह शाम, या हर माह में, या हर 2 माह में, या 6 माह में, या 7वें महीने, या हर साल में। यानी वो मिसाल उसको अब टैली कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये मिसाल हमने सुन ली, दरख्त के साथ बात भी समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा अगर इसको एक ईमान वाले के साथ टैली करके देखें तो सबसे पहले देखिए कि दरख्त की खूबियां क्या होती हैं। दरख्त बतदरीज बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले बीज, फिर कोंपल, फिर पतली सी डंठल, फिर तना, फिर उसके ऊपर लकड़ी आती है, और आखिर कितना सख्त होता है। इसी तरह मोमिन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। आपको अपनी जिंदगी में तदरीज लानी है। पहले अपने ईमान को पक्का करें, ताल्लुक बिल्ला को पक्का करें, लोगों के देखने और ना देखने से बेनियाज हो जाए। जिसने ये कर लिया ना तो उसकी नेकियां कभी खत्म नहीं होंगी। वरना आप देखिए कि आप दरख्त के नीचे जड़ें काट दें और ऊपर नेकियों के कुछ फल लगा दें, चंद दिन में सूख जाएगा दरख्त। इसीलिए हमारी नेकियां खत्म हो जाती हैं, जरा सी मुखालफत से हम नेकी छोड़ देते हैं, जरा सी इख्तलाफी बात सुनी कहते नो मोर, घर बैठ के तस्बीह पढ़ लेंगे, घर बैठ के नमाजें तस्बीह नमाज पढ़ लेंगे। हमसे नहीं होता ये काम, कितनी जल्दी हम हिम्मत हारते हैं। जरा काम हमारी मर्जी के खिलाफ, लोग हमारी बात ना माने, डिसिप्लिन ना हो, कोई रूल्स टूटे, हम कहते खत्म, बस घर बैठो, अपने घर में बैठ के काम करो। मोमिन ऐसे कभी नहीं करता। अगर नबी ऐसे करते तो ये दीन ऐसे ना फैलता। फिर आप देखिए कि दरख्त का बढ़ना शाखों और पत्तों का इजाफा है ना। सबसे पहले उसमें लकड़ियां होती हैं, फिर वो छोटे छोटे से बीज लगते हैं ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते बनते हैं, और इसी तरह फिर पत्ते बढ़ते हैं तो आखिर में फल लगता है। इसी तरह मोमिन का इजाफा सबसे पहले मारिफत इलाही में होता है। अल्लाह की मारिफत मिलती है ना तो उसके बाद मोमिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर नमाजों में मजा आता है, फिर सदका करके अच्छा लगता है, फिर लोगों से नेकी करके मजा आता है। फिर इसी तरह देखिए कि दरख्त की एक खूबी, दरख्त की खुराक क्या आपको पता है? एक लफ्ज में बता सकते हैं लफ्ज, दरख्त क्या खाता है? वो तो उगने के लिए। दरख्त की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड है। आपके एटमोसफेयर की नागवार तरीन चीज दरख्त लेते हैं। वो तो बनने के लिए चाहिए थे ना बीज, पत्ता तो बन गए। ये जितने दरख्त बाहर हैं ये आपको पता कैसे है? वो बाकी बातें और हैं, लेकिन जो हम सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, दरख्त उसको लेता है। जब वो ले लेता है ना तो फिर उसके इर्द गिर्द सुकून होता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जा हो, दरख्तों, तो उसके करीब जाओ। जिनको सांस का भी प्रॉब्लम है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको दरख्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहां फ्रेश ऑक्सीजन होती है। लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, देते ऑक्सीजन है। इसी तरह मोमिन किसी भी सोसाइटी में नहीं अनिल मुनकर करता है, वहां की खराबियों को चुनता है, वहां की बेकार चीजों को लेकर वहां खैर देता है। मोमिन ताने सुने, इल्जाम सुने, परेशान कुन बातें सुने, उसने जवाब में लोगों को मुफीद चीज ही देनी है। तो कोया के फिजा से बेकार गैस को लेकर एक आराम चीज देता है। हमने ऐसा करना, सबसे मुश्किल काम है मेरी ख्याल में, जो लोगों को सारी बातों से दूर कर देते हैं कि ये नियम से होता। अच्छे हालात में काम करना बहुत आसान है, बुरे में नहीं कर सकते। सब कह में आप अच्छे, कोई कुछ ना भी कहे तो हम काम करते रहते, लेकिन जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर हम कहते नो, एक मिनट नहीं मैं और रह सकती। फिर दरख्त की एक खूबी देखिए कि दरख्त रिएक्शन नहीं देता, रिएक्शनरी नहीं होता। आप देखिए कि आप दरख्त को पत्थर फेंके, वो जवाब में आपको फल फेंकता है। बनना है तो दरख्त बनो। लोग तुम्हें तानों के, इल्जामात के पत्थर फेंके, तुमने अपने मुख्तलिफ फल भेजने। इसी तरह मोमिन जैसे दरख्त रिएक्शन नहीं करता ना, तो मोमिन भी मुसीबत पर सब्र करता है, नेमत पर शुक्र करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर इसी तरह देखिए कि दरख्त के साए में लोगों को सुकून मिलता है। थके हारे मुसाफिर धूप की तमाजत से बेचैन हुए हुए दरख्त के नीचे आते हैं, तो गहरे साए में खुशी पाते हैं। इसी तरह मोमिन भी लोगों को साया देता है। लोग अपना दुख सुख उससे करके दिल हल्का करते हैं, लेकिन उनको ये यकीन होता है कि इसने आगे हमारी बात किसी और से नहीं करनी, हमें अच्छा मशवरा देना है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिससे हो जिगरे लाला में ठंडक वो मोमिन, या जिससे हो जिगरे लाला में ठंडक, जिससे हो जिगरे लाला में ठंडक वो शबनम। मोमिन शबनम होता है, मिस्ट, लोगों के वो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। मोमिन हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीता है। वो खुद खुश ना भी है ना, तो कहता है कि मैं दूसरों को खुशी दे रहा हूं ना, यही बहुत है। फिर आप देखिए कि दरख्त की शाखें आपस में कितनी फैली होती हैं। दो दरख्तों को साथ जोड़ के देखिए, बात अब उनकी ब्रांचेज एक दूसरे के अंदर भी जुड़ती हैं, लेकिन उलझती नहीं है। इसी तरह मोमिन लोगों के बीच में रहता है, लेकिन उनसे उलझता नहीं है। फिर नेक्स्ट, जितने दरख्त किसी इलाके में ज्यादा होंगे, वहां का माहौल उतना ही खूबसूरत होगा, फ्रेश होगा। इसी तरह जितने मोमिन कहीं ज्यादा हों, वहां का माहौल खूबसूरत होगा, रुहामा बैना हो, एक ऐसी खेती कि जहां लोग खुशी पाए। और हम ऐसे ही थे, हमारे साहब ऐसे ही थे। फिर आप देखिए कि दरख्त का कटना माहौल के लिए नुकसानदेह होता है। एक दरख्त कटता है ना, तो कितना नुकसान हो जाता है। इसी तरह एक मोमिन की मौत उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़े नुकसान का जरिया होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त पौधे को, सॉरी, खोखले दरख्त जो होते हैं ना, वो हल्की आंधियों में ही गिर जाते हैं। इसी तरह से कमजोर ईमान वाले भी जरा सी आजमाइश से खिर जाते हैं, दब के बैठ जाते हैं, सॉरी। फिर आप देखिए कि पौधे को जमीन की खुराक भी मिलती है, यानी नीचे से पानी ले रहा है, खाद ले रहा है, लेकिन आसमानी गजा भी चाहिए उसको ऊपर से पानी की सूरत में। इसी तरह बंदा है मोमिन हर वक्त जिस्म और बतन के खाने पीने के तकाजे नहीं, बल्कि ऊपर से रूह की गजा भी लेता है। मोमिन खुद भी कोशिश करता है, अपनी कोशिश, और अल्लाह की मदद भी उसको मिलती है। फिर इसी तरह देखिए कि कुछ भी ना आप दरख्त से लें, दूर से दरख्त को देखें ना, तो दरख्त थकी हुई आंखों के लिए ठंडक का सामान बनते हैं। सब रंग से आंखों को पता सुकून मिलता है। जिनके आंखों के प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स उनको फिर सब्ज रंग रिकमेंड करते हैं। देखो इसी तरह मोमिन के अच्छे अखलाक भी दूसरों के लिए खुशी का जरिया होते हैं। जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक वो शब्द। फिर अब देखिए कि दरख्त कड़ी धूप में खुद खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को छांव देते हैं। दरख्तों को गर्मी नहीं लगती या वो धूप में नहीं गलते, लेकिन अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह मोमिन दुखी लोगों के दुखों मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर उनको तसल्लियां देता है। उसका दिल अंदर से तड़प भी रहा ना किसी की तकलीफ पे, लेकिन अगले को कहता है नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, उसके साथ ही और ज्यादा उसको बेसब्रा नहीं करते थे। फिर आप देखिए कि दरख्त हवा की इंप्योरिटीज को दूर करते हैं ना, हवा को प्योरीफाई करते हैं। मोमिन सोसाइटी की बुराइयों को दूर करते हैं। दरख्त माहौल का बैलेंस कायम रखते हैं, कितनी ऑक्सीजन कितनी कार्बन। आपको पता है कि रात को दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों भला, उस वक्त कार्बन निकलती है। तो मोमिन को क्या सिखाया कि तुम भी बैलेंस रहो, आधी आधी रात को जाग कर लोगों के घरों में महफिलें सजाकर उनके अगले दिन की नमाज अदा ना करो। जिस तरह रात को दरख्त खतरनाक हो जाता है ना, इस तरह मोमिन का दूसरे के साथ रात को बैठना नुकसानदेह है, हदीस में मना है। हम बाकी बातों में तो बहुत बात करते हैं लेकिन इस पे कभी गौर ही नहीं करते कितनी ज्यादा गैर इस्लामी ये चीज है कि हमारी महफिलें रातों को सजती हैं। दिन को फायदा, रात को आराम। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त या तो किसी को फल देता है या छांव देता है या दोनों देता है। इसी तरह मोमिन किसी न किसी सूरत में अपने इर्द गिर्द वालों को फायदा ही देता है, चाहे रूहानी चाहे जिस्मानी। फिर आप देखिए कि दरख्त सहारा देता है, टेक लगा के लोग बैठ जाते हैं ना, कमर टिक जाती है उसके साथ। इसी तरह मोमिन दीन के रास्ते में चलने वालों को सपोर्ट देते हैं। आओ तुम नहीं हिलना, मैं तुम्हें पीछे दूंगी साइड, मैं तुम्हारी बैक पे रहूंगी, चलो कौन तुम्हें कुछ कहता है। यानी दीन के लिए मोमिन से बड़ा सहारा कोई नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त कुदरत पर इन्हिसार करता है, लोगों पे तो नहीं करता कि माली आएगा तो कुछ करेगा। दरख्तों को कभी किसी ने पानी दिया, छोटी छोटी उनको देना पड़ता है, ये जो फसलें उगती है उनको देना पड़ता है, दरख्तों को नहीं देना पड़ता। इसी तरह मोमिन भी लोगों की बजाय अल्लाह पर इन्हिसार करता है। फिर दरख्त की एक और खूबी देखिए कि दरख्त एक ही सिमत में ऊपर बढ़ता है, इधर उधर नहीं फैलता हमारी तरह है। और मोमिन भी दूसरों से बेनियाज, हनीफन इलल्लाह, फोकस्ड अल्लाह की तरफ होता है, उसका सारा रजू अल्लाह की तरफ होता है कि अल्लाह से मेरा कैसा मामला है। फिर इसी तरह बादे मुखालिफ दरख्त को पिछाड़ नहीं सकती, मुखालिफ हवाएं चलती हैं ना, तो आपने कभी देखा दरख्त यूं हिलते हैं, पत्ते हिलते जुलते हिलते जुलते। इस तरह मोमिन की भी जब जिंदगी में मुखालिफतें होती हैं ना, तो गिरता नहीं बल्कि झूमता, इंजॉय करता है। आप कहेंगे ये कौन सा बेवकूफ, ये कैसे होगा, ये अभी हमें नहीं समझ आएगा, आप ये समझ लें। लेकिन जितनी मुखालफत आएगी उतना आप मुस्कुराएंगे। कहते ना कि ना तुंदिए वादे मुखालिफ से घबरा के ओकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हवा ना चले तो आपके जहाज भी नीचे गिर जाए, परिंदे भी गिर जाए। फिर आप देखिए कि दरख्त की जो रूट्स हैं या तना है, उसका बाकी सब कुछ एक जगह जमा करें। मिसाल है एक दरख्त है, खाल छाल जड़ें पत्ते कितना ढेर लगेगा और उसके मुकाबले में फल कितना होगा, वो थोड़ा सा होगा ना। यानी फल बहुत थोड़ा सा होता है। इसी तरह एक ईमान वाले को अपनी जिंदगी में एफर्ट्स कोशिशें इनपुट बहुत डालना पड़ता है लेकिन फल बहुत थोड़ा होगा। और सब कुछ एक तरफ है, दरख्त छोटा सा फल देता है लेकिन मीठा होता है। तो मोमिन कम बोलता है मगर जो बात करता है वो पते की करता है, हर वक्त उल फुल नहीं बोलता। फिर आप देखिए अगर एक साफ सुथरा दरख्त, और खास तौर पर अगर हदीस को साथ मिला लें, खजूर का दरख्त बड़ा सुलझा हुआ दिखता है ना, डिसेंट सा साफ, उसकी इधर उधर शाखें भी नहीं होती। कभी अरब मुल्कों में जाके आपने देखा होगा तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। इसी तरह मोमिन बहुत डिसेंट होता है, बिखरा शिखरा नहीं होता, वो अजीबो गरीब नहीं दिखता, बहुत डिसेंट होता है। फिर आप देखिए दरख्त पर जितना फल ज्यादा लगे दरख्त उतना झुकता है। ईमान वाले को जितना रिस्क एल माल तकवा वरा मिलता जाए वो उतना ही हम्बल होता है, उतना झुकता है। फिर आप देखिए दरख्त जितना मर्जी ऊपर बढ़ जाए زمین سے اپنا تعلق نہیں توڑتا. اسی طرح مومن کو جتنی مرضی بلندی مل جائے اپنے اصل سے تعلق نہیں توڑتا. ہم تو ایک جھٹکے میں تعلق توڑ کے مار دیتے ہیں نا کہ پیچھے کرو آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس اب اپنے سگے ماں باپ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 21 سال تک جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. مومن کبھی نمک خوار نہیں ہوتا. محسنوں کے ساتھ تو مومن کا تعلق ہمیشہ احسان کا ہوتا ہے. تھک گئے آپ درخت کے فائدے سنتے ہوئے؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ گن بھی رہے کہ نہیں؟ 100 پورے ہونے ہیں. نہیں, اس سے زیادہ ہوئے. چلیے آگے لکھیں. درخت کے کٹنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. زندگی میں تو سایہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے, آکسیجن دیتا ہے. کٹ گیا تو فرنیچر. اسی طرح مومن زندگی بھر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لگائے ہوئے پودے صدقہ جاریہ اور اس کے نیک اعمال انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت اگر سامنے رکھیں تو اس کو دیکھیں نا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے صحرا میں کھڑا ہوا ایک سنتری, بہت ڈیسنٹ طریقے سے وردی پہنا ہوا ایک فوجی ہے. مومن کے اندر وقار لازمی ہے. وہ ہلتا جلتا رہے گا, تڑپتا رہے گا تو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر اچھا, بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں اس وقت جو سوچ رہی ہوں نا اپنی امیجنیشن میں, وہ درخت کہاں سے دیکھ رہی ہوں؟ جہاز کی کھڑکی سے. کبھی آپ کا جہاز جب اترتا ہے یا چڑھتا ہے تو آپ ذرا ونڈو سے نیچے درختوں کو تو دیکھا کریں. بعض دفعہ ہوتا کہ دو درخت آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ان کا اوپر سے جو جھاڑ ہے نا وہ سب مل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اس کی ہے یا اس کی ہے, لیکن جب نیچے دیکھیں تو جڑیں اور تنے فرق ہوتے ہیں. یہ ٹیم ورک ہے. مومن بھی دین کے کام آپس میں مل جل کے کرتے ہیں اور میں کا شکار نہیں ہوتے. انا یہ میں نے کیا, یہ میرا کام ہے, میں انچارج ہوں, میں بڑی ہوں, تم چھوٹی ہو. یہ نہیں ہوتا. پھر ایک اور خوبی دیکھیے کہ درخت کٹنے سے پہلے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح مومن بھی دنیا سے جانے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ میرا پتا تو کٹ رہا ہے لیکن میرا اکاؤنٹ اب میرے بچے کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا نیکیوں کی صورت میں. اسی لیے دیکھیے صحابہ کے بچے آگے آگے, پھر پہلے عمر تھے, پھر ابن عمر آگے, عباس تھے تو ابن عباس آگے. تو مومن پیچھے نیک اولاد چھوڑنے کی فکر کرتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ درخت پھولوں کی طرح اتنے فینسی تو نہیں ہوتے دیکھنے میں, لیکن کارآمد بہت ہوتے ہیں. اسی طرح مومن کو ڈسپلے نہیں ہوتا. مومن کو شو پیس نہیں ہے, ڈیکوریشن پیس نہیں کہ مجھے دیکھو. کو ڈمی نہیں ہوتا مومن. مومن اپنے ظاہر میں خوبصورت بھی کیوں نہ ہو, اس کو فیلنگ ہی نہیں آتی کہ میں خوبصورت ہوں. اور میرے خیال میں خوبصورتی کی سب سے پیاری ڈیفینیشن یہ ہے کہ خوبصورت وہ ہے جس کو اپنے خوبصورت لگنے کا احساس نہ ہو. اور اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد شیشہ دیکھ رہے ہیں اور مصیبت آ, فیس ٹائم کی محفلوں میں بیٹھے میں نے لوگوں کو اپنی تصویریں کھینچتے دیکھے, اپنی بھی ساتھ والوں کی بھی. ہر بندہ اپنے سحر میں مبتلا لگتا ہے الا ماشاء اللہ. پہلے تو کوئی ایک دلہن کو لوگ دیکھ کے کوئی اس کے پیچھے منڈلاتے تھے, ہر ایک اپنے آپ کو پوز دیکھ کے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی ساری معصومیت میں. شکل و صورت اللہ نے دی ہے آپ کو مجھے. درختوں کو آپ دیکھیے, کوئی بظاہر ان کے اندر فینسی پن نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کو وہ پیارے لگتے ہیں, ان کو خود فیل نہیں ہوتا. اس طرح مومن کو بھی بے نیاز ہونا چاہیے اپنے ظاہر سے. پھر آپ دیکھیے کہ کھجور کے درخت کا پسندیدہ علاقہ کون سا ہے؟ بول دیں سارے, عرب. تو مومن کا دل بھی عرب میں لگتا ہے. اس کو بھی مزہ آتا ہے کہ چھٹیاں میں نے عرب میں جا کے منانی ہے, یا میں نے فیوچر میں ایسے ملکوں میں رہنا جہاں میرے بچوں کو عربی آ جائے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ کھجور کا درخت بغیر مالی کے بھی اگ جاتا ہے, حفاظت نہ بھی کی جائے تو اگ جاتا ہے. اسی طرح اگر مومن کے اندر ایمان ہے نا تو باہر سے کوئی اس کی سرپرستی نہ بھی کرے, کوئی موٹیویشن نہ بھی ملے تو قائم رہتا ہے. پھر درخت پھل دیتا ہے, پیسے نہیں مانگتا. کبھی ہوا ایک پاؤنڈ دو پھر ایک سیب دوں گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ بس اس نے دینا ہے. اسی طرح مومن بغیر صلے کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اچھا, ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے کہ جو کھجور کا سایہ ہے نا وہ اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ بیکار لوگ اس کے نیچے بیٹھے زیادہ دیر. मोमिन भी बेकार वक्त जाया करने वालों को अपने इर्द गिर्द जगह नहीं देता, क्योंकि उसको पता कि लोगों ने ना काम करना है ना मुझे करने देना। खजूर का दरख्त गर्म इलाकों में ज्यादा उगता है, इसी तरह मोमिन भी ना मुवाफिक हालात एडवर्स कंडीशंस चैलेंजेस में ज्यादा काम करता है। खजूर की शाखें ज्यादा देर तक परिंदों को बैठने नहीं देती, मोमिन के दिल पर भी शैतान नहीं बैठता। मोमिन सॉरी दरख्त फल सबको देता है, मखसूस लोगों को नहीं, तो मोमिन भी तासुब से बचते हुए फायदा सबको देता है। अब ये कितनी होगी बातें, अब आप इस आयत को समझें तो आपको कैसी लगेगी? क्या लम तर कई फदा रब अल्लाह मसलन कलीमतन तैयबा। अब अपने दिल से पूछिए, क्या मैं ऐसी हूं जैसा अल्लाह ने यहां कहा? और जब ये सब कुछ हो, इसके बरक्स आप देखिए कि काफिर को अल्लाह ने दो जुमलों में बल्कि एक जुमले में बयान कर दिया। आयत अगली देखें तो साथ ही समझ आ जाएगी। वह मसलु कलीमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा, और खबीस कलमे की मिसाल खबीस दरख्त की है। इससे क्या मुराद है? कुफर का कलमा, शिर्क का कलमा, निफाक का कलमा और हर गुना की दावत का कलमा। बिल्कुल उसका ऑपोजिट, गंदी बातें, बेकार बातें, लफ बातें, फुहश बातें, बेकारियात में उलझी हुई बातें। अगर वो हर अच्छी बात थी, जिक्र थे, अस्कार थे, दुआएं थी, कुराने पाक थी, तबलीग थी, तो कलिमतन खबीसा क्या है? बिल्कुल लोगों को बुराई की तरफ लाने वाली बातें जो लोगों को लेके आती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये कैसा है? निज तो सत मिन फौकिल अर्दी, ये इसकी पहली सिफत है। इसका हाल क्या कि जिस्म के ऊपर ऊपर बढ़ता है। थोड़ा मुश्किल लफ्ज लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसके पर गौर कीजिएगा तो आपको बताती हूँ। निज तो सत लफ्ज में क्या छुपा हुआ है? उर्दू में कभी आपने लफ्ज सुना जुस्सा, जीम सा, ये जुस्सा, जुस्सा कहते हैं जिस्म को, फिजिक। निज तो सत का मानी क्या है कि इसकी बॉडी बस ऊपर ही ऊपर बड़ी बड़ी होती है, यानी नीचे रूट्स नहीं होती। मा लहा मिन करार, इसके लिए कोई जाय करार नहीं है। क्या मतलब है कि कुफर की बुनियाद पे जो दरख्त उगता है या नेकियां होती हैं उनमें कोई भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती। देखिए भलाई के असरात के मुकाबले में बुराई के असरात बहुत थोड़े होते हैं, ये लिख लें। वो पीछे भी पड़ी है ना, बस रात में खाक और बातिल की झाग और धातों वाली मिसाल, उसको सामने रखिए कि भलाई और उसके असरात के मुकाबले में बुराई की दावत और बुराई के असरात की मिसाल ऐसी है। बाजी हम इनको ले जाएंगे, आप डोंट वरी। आप इनको जाने का पूछ रहे हैं जी? आप सिस्टर जहां से आप आई हैं वहां से इस क्लास में 8-10 लोग हैं, अगर आपके इस टाइम है तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है? आप सबको भी अब जाना तो नहीं याद आ गया है, पूरा कर लें इस मौजू को। फरमाया कि कुफर की बुराई की मिसालें ऊपर ऊपर बहुत होती हैं किसी सोसाइटी में, आपको भी ले जाएंगे हम, ओके? बुराई जो होती है ना, देखने में बहुत फैली हुई लगती है लेकिन उसको सबात नहीं होता। एक मजबूत हाथ आता है ना, सब भाग जाते हैं ऐसे गलत काम करने वाले। तो क्या बताया गया कि बुराई बजाहर लोगों में रिवाज पा जाती है, जाहरी तौर पे कशिश होती है, चमक दमक है, ग्लैमर है, लेकिन हकीकत में बुराई को सुबात नहीं है। एक मूसा का सा आया था और फिरौन का सारा बातिल जो था वो डूब गया था। तो असल बात क्या है कि बुराई को कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे मुराद क्या है कि हर वो बंदा जिसने खलूस के बगैर नेक अमल किया वो इससे मुराद है, कुफर के साथ की हुई हरकतें वो मुराद है, रियाकारी के साथ की हुई चीजें इसमें आती हैं। क्योंकि थोड़ी सी मुखालफत से जब बंदा दीन का काम छोड़ता है ना, तो फौरन समझ लीजिए कि ये मैंने किया ही किसी और के लिए था। हदीस में आता है कि जो मोमिन की मिसाल है वो खजूर के दरख्त की है। तो ये जो बुरी मिसाल है ना, आपने अंदराइन का नाम सुना है? अंदराइन कांटेदार एक जगह होती है, जैसे अरब लोग हंजल बोलते थे, अबू हंजला का नाम भी वही, हा नून जोए लाम और शिरियान कट कट, जैसे वो मुझे बचपन में एक दरख्त देखा हुआ याद आ रहा है कि जिसको तोड़ते थे ना तो उसमें कड़वा सा दूध निकलता था, कांटे, उसको कहते हैं हंदरन, हंदल और इंद्राइन। हाथ को लग जाता था ना उसका कड़वापन, तो बड़ी देर तक चिपका चिपकी, और वही चीज है बिल्कुल। तो अल्लाह ने मिसाल इसको दी है कि कुफर बिल्कुल ऊपर है, असल कहानी ईमान की है। कैसे? अभी बात पूरी नहीं हुई, बल्कि अगली आयत में बताया कि ये ईमान का सुबात सिर्फ जिंदगी में नहीं, बल्कि अल्लाह ईमान वाले को सुबात देता है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। जबकि वह युदिल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और गुमराह करता अल्लाह जालिमों को भी और इनको भी, और जालिमों को, और अल्लाह करता है जो चाहता है। यहाँ साबित कौल से क्या मुराद है? साबित कदमी मुराद है। अल्लाह तआला ईमान लाने वालों को सच्ची बात के साथ दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है। दुनिया में भी मोमिन को इस्तकामत मिलती है और कब्र में भी मिलेगी, मुनकर नकीर के सवालों पर। इस पे आपको एक दो रिवायतें सुना देती हूँ तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सही बुखारी की ये रिवायत है कि नबी सल्लम का मामला क्या था, आपने फरमाया कि मुसलमान से जब इसकी कब्र में सवाल होता है तो वो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही मुराद इस आयत की है। मुस्नद की रिवायत में कि एक अंसारी के जनाजे में हम नबी सल्लम के साथ पहुंचे, कब्रस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। आप भी तसव्वुर में लाए, आप बैठ गए और हम भी आपके आसपास ऐसे बैठ के, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। आपके हाथ में जो तिनका था इससे आप जमीन पर लकीरें निकाल रहे थे, ऐसे यानी जैसे लिख रहे हैं कुछ। जो सर उठाकर दो तीन मरतबा फरमाया कि अजाबे कब्र से अल्लाह की बना चाहो। बंदा जब दुनिया की आखिर, अब ये सुने, ये कहानी है, लिखने की जरूरत नहीं है, सच्ची रिवायतें हैं। आपने फरमाया कि बंदा जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, पहले अपने ऊपर ले मौत का वक्त, तो इसके पास आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, गोया कि इनके चेहरे सूरज जैसे हैं, जिनके साथ जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। इसके पास जहां तक किसकी निगाह काम करे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सरहाने भर जाते हैं और फरमाते हैं, पाक रूह अल्लाह तला की मगफरत और उसकी रजा की तरफ चल। वो इस आसानी से निकल जाती है जैसे किसी मुश्क से पानी का, या मश्क, मश्क होती है मुश्क, जैसे किसी मश्क से पानी का टपक रहा हो, यानी नीचे कतरा कतरा गिरे पता भी नहीं। एक आंख छपकने के बराबर की देर में वो फरिश्ते इसे इनके हाथों में नहीं रहने देते, यानी यूं रूह को प्यार से, जैसे बेबी डिलीवर हो तो लोग ले लेते हैं ना, तो फरिश्ते इस रूह को ले लेते हैं और जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में उसको लपेटते हैं। खुद इस रूह में से वो निकलती है कि रूह जमीन पर ऐसी उम्दा खुशबू ना सूंघी गई हो। वो इसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? इसका जो नाम दुनिया में मशहूर था ना वो उस बताया जाता है, और उसके बाप का नाम भी। आसमाने दुनिया तक पहुंचकर दरवाजे खुलवाते हैं, आसमान का दरवाजा खुल जाता है और वहां के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक और दूसरे से तीसरे आसमान तक आते हैं। इसी तरह सातवें आसमान पर वो पहुंचता है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, रूह सातों आसमानों को तय करती हुई सातवें पे गई, वहां कौन है? अल्लाह की जात। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मेरे बंदे को किताबे इल्लियीन में रख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो, मैंने इसी से इसे पैदा किया है और इसी से दोबारा निकालूंगा, यानी अभी वापस इसकी रूह को जाके जमीन में डालना, इसके जिस्म में, बस इसकी रूह इसी के जिस्म में लौटा दी जाती है, अब कब्र में दोबारा आ गया मर्दा। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, इस्लाम। फिर सवाल करता है, वो कौन शख्स है जो तुम्हें भेजा गया था? वो कहता है, वो रसूलुल्लाह थे। फरिश्ते पूछते हैं, तुझे कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, इस पर ईमान लाए, इसे सच्चा माना। इसी वक्त आसमान से एक मुनादी यानी पुकारने वाला पुकार लेता है कि मेरा बंदा सच्चा, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो और जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ का दरवाजा खोल दो। पर जन्नत की रुख परवर खुशबूदार हवाओं की लपटें उसे आने लगती हैं। इसकी कब्र बकदर दराज की निगाह, यानी जहां तक नजर जाती है वहां तक वसी कर दी जाती है। इसके पास एक शख्स खूबसूरत नुरानी चेहरे वाला, उम्दा कपड़ों वाला, अच्छी खुशबू वाला आता है। और इससे कहते हैं आप खुश हो जाइए, इसी दिन का वादा आप दिए जाते थे, ये इससे पूछते हैं आप कौन है, यानी ये उसको नहीं पहचान पाता। आपके चेहरे से वैसे भलाई ही नजर आती है, तो वो जवाब देता है कि मैं तेरा नेक अमल हूं। उस वक्त मुसलमान आरजू करता है कि अल्लाह कयामत जल्द कायम हो जाए तो मैं अपने अहलो याल और मुल्क और माल की तरफ लौट जाऊं। ये है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। कब्र के सवाल जवाब पे अल्लाह मोमिन का दिल जमाते हैं। काफिर के साथ क्या, सुन लीजिए तो आपको सारी बात खुल जाएगी। अभी रिवायत चल रही है, और काफिर बंदा जब दुनिया के आखिरी सात और आखिरत के अव्वल सात में होता है, इसके पास स्याह चेहरे के आसमानी फरिश्ते आते हैं और इनके साथ जहन्नमी टाट होता है, जूठ चुभने वाला, जहां तक निगाह पहुंचे वो बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं खबीस रूह अल्लाह के गजब और कहर की तरफ चल। इसकी रूह जिसम में छुपती फिरती है, जिसे बहुत सख्ती के साथ निकाला जाता है। इसी वक्त एक आम छपकने जितनी देर में इसे फरिश्ते इनके हाथों से ले लेते हैं और इस जहन्नमी बोरे में लपेट लेते हैं। इससे ऐसी बदबू निकलती है कि रोए जमीन पर इससे ज्यादा बदबू नहीं पाई जाती। अब ये इसे लेकर ऊपर को चढ़ते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं ये खबीस रूह किसकी है। इसका जो बदतरीन नाम दुनिया में था वो बतलाया जाता है और इसके बाप का नाम भी। आसमानी दुनिया तक पहुंचकर दरवाजा खुलवाना चाहते हैं मगर खोला नहीं जाता। पढ़ सूरत अल अराफ में ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, इजाजत ही नहीं मिलती कि इस रूह को आसमान पे जाने की, यहां तक कि सुई नाके से ऊंट गुजरे। अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है इसको किताबे सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे की जमीन में, यानी काफिर की रूह को पटक के जमीन के अंदर फेंका जाता है। बस इसकी रूह वहीं फेंक दी जाती है। फिर आपने वायद पढ़ी वह मैं युश्रिक बिल्लाह ही फकान नमखर मिन असमा, मेरा के सुरह हज या अंबिया की आयत है। वो तिलावत की कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा और फिर इसको परिंदे उचक ले जाएं या आंधी इसे किसी दूर के गड्ढे में फेंक दे, फिर इसकी रूह इसी के जिस्म में लौटाई जाती है। इसके पास दो फरिश्ते पहुंचते हैं जो इसे बिठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है हाय हाय ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। बस जो है तुम्हें यहां तक आता है कि काश मैं पढ़ता और लिखता, दरस तक का लफ्ज आता है। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है हाय लादरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर पूछते हैं वो कौन था जो तुम में भेजा गया, वो कहता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं। इसी वक्त आसमान से एक पुकार की आवाज, पुकारने वाले की पुकार आती है कि मेरा बंदा छूटा है, इसके लिए जहन्नम की आग का फर्श कर दो और दोजख की जानिब का दरवाजा खोल दो, वहीं से इसे दोजख की हवा और दोजख का झोंका पहुंचता रहता है। इसकी कब्र इस पर इतनी तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में घुसती हैं, इस तरह से पसलियों में बड़ी बड़ी और डरावनी सूरत वाले, बड़े मैले कुचैले, खराब कपड़ों वाला, बड़ी बदबू वाला एक शख्स इसके पास आता है और कहता है अब गमनाक हो जाओ, इसी दिन का तुझसे वादा किया जाता था। ये पूछता है कि तू कौन है, तेरे चेहरे से बुराई बरसती है। वो कहता है तेरे बदामाल का मुजस्मा हो, तो ये दुआ करता है कि अल्लाह कयामत कायम ना हो। अबू दाऊद निसाई इब्ने माजा और बहुत सारी रिवायतों में और मुसद की रिवायत में आता है कि जब नेक बंदे की रूह निकलती है आसमान और जमीन के दरमियान फरिश्ते तो उस पर रहमत की दुआ करते हैं, दरवाजे खुलते हैं और हर फरिश्ते की ख्वाहिश होती है कि इसको मैं लूं। जबकि बुरे शख्स के बारे में आता है कि इसकी कब्र पर एक अंधा बहरा गूंगा फरिश्ता मुकर्र किया जाता है जिसके हाथ में गुर्ज होता है हंटर, और अगर वो किसी बड़े पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो मट्टी बन जाए, इससे वो उसको मारता है और ये मट्टी हो जाता है। फिर अल्लाह ताला इसको दोबारा रूह दे के दोबारा जिंदा करते हैं, जैसा था वैसा होता है। फिर वो गुर्ज पड़ता है, ये ऐसा चीखता है कि इसकी चीख को सिवाय इंसानों के और जानवरों के जिन्नों के हर एक सुनता है। ये कब्र के अजाब की भी दलील है। हज़रत बरा कहते हैं कि इस आयत से ये जो हम पढ़ रहे हैं कब्र के अजाब का सबूत मिलता है। तो यहां जो सब्बितुल्लाह से मुराद मोमिन को कब्र के सवालों पर इस्तकामत मिलना है। दुआ कीजिए, हदीस में आता है कि मोमिन, ये रिवायत भी मौजूद है कि बंदा जब कब्र में उतारा जाता है अभी लोग उससे चेहरे फेरते हैं कि ये लोगों की जूतियों की आहट अपने कानों में सुनता है, और दो फरिश्ते इसके पास आए जाते हैं और ये सब कुछ होता है। बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन आप देखिए कि इस दुनिया के मजे तो 4-6 दिन के हैं ना, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां की का अंजाम पीछे रहेगा। आज अगर दीन के नाम पे इस्तकामत नहीं है ना, तो वहां इस्तकामत नहीं होगी। छोटी छोटी बातों पे नेकियों को पीछे डाल देना, जिंदगी का नक्शा बदल देना, ये बहुत खतरे की बात है। अपनी फिक्र हम सब करें, क्योंकि हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। अल्लाह से मदद मांगते हैं कि हमें इस्तकामत दे। यहाँ ब्रेक लेंगे आप लोग भी, और कोई सवाल की बात करें। क्या आपने सीखा आज के सबक से? कोई भी अपनी खुशी से शेयर करना चाहे तो आ सकता है। जी आलिया, वहीं बैठे हुए बता दीजिए, क्या क्या सोच रहे हैं? अल्लाह इस्तकामत दे। और इस्तकामत वहां जाके मिलेगी, आज मिलेगी। दरख्त आज मजबूत करना ईमान का, फिर वहां खैर से मिलेगा। जी और कोई? जी आप पीछे नसरीन जी। जी शाबाश, बहुत अच्छी बात आपने याद रखी कि नेकी करना आसान है, संभालना मुश्किल है। जी और कोई इधर से? जी आप आरफा।
मैंने ये सीखा कि मुस्तकिल जो है कामों के अंदर अपने इखलास को चेक करना है, और इस नियत को कि हम सल्लम की तरीके पे करें कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसे नहीं किया तो फिर आपके अमाल जितने भी अच्छे हैं वो राख बन जाएंगे, और उस वक्त हम बहुत तहीदामा होंगे।
बिल्कुल, ये लिखते हैं कि कुरान के सफर में हम 13वीं सीढ़ी पर हैं। मेरी फीलिंग ये है कि अब मैं टीन एजर हूँ, इस मोड़ पर बिगड़ने का ज्यादा खतरा होता है। शैतान बहकाने की बहुत कोशिश करता है, मैं गवाही देती हूँ कि आप एक अच्छी माँ बन देती हूँ कि आप एक अच्छी माँ बन रही हैं। मैं देखती हूँ कि आप हमारी कितनी फिक्र करती हैं, 1 घंटा लेट आना भी आपको फिक्र में डाल। ये मुझे कह रही हैं आप? अच्छा, मैं आपके ऊपर लेके चली। मतलब इनको ये है कि इनको इसमें एक तड़प दिखती है कि 1 घंटा लेट आना भी आपको फिक्र में डाल देता है, हमारी हर हरकत पर आपकी नजर होती है। मेरी दुआ है कि आपके साथ अले हमारे कुरान का सफर मुकम्मल हो, शैतान हम पर हमलावर ना हो सके। आमीन। जितनी फिक्र और कोशिश दीन के लिए आप करते हैं, अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे, उससे बढ़ के ये तो कुछ भी नहीं है। जी आप इरम जी इधर आ जाए, नहीं फिर वो लिखना शुरू हो जाते हैं लोग के में आवाज नहीं आती। अमली जिंदगी के पर्चे कितने मुश्किल है, बैठ के बातें करना बहुत आसान है। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे जो दरख्त और ईमान की जो मिसाल थी बहुत अच्छी लगी, और उसमें यही है कि हमें जो अपने ईमान के रूट्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, कि अभी भी इनमें बहुत बहुत कमी है। तो अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ है कि हमें इन रूट्स को मजबूत करने वाला बनाए, क्योंकि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों में, मैं भी शामिल हूँ उसमें। तो
आपका
हमें
चेहरा बता
रूट्स को जो है, जी
आपका चेहरा बता रहा है,
लेकिन ये है कि हमें अपने ईमान के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और सबसे बढ़ के एक दूसरे को थामना है, ना कि डिस्करेज करना है। मैं इस क्लास के हवाले से ही बात करूंगी कि हम सब स्टूडेंट्स को एक दूसरे को थामना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ये नहीं कि उसके साथ मिल के उसको और बात को बढ़ाना है, बल्कि हम एक दूसरे को हाथ थामें और हम एक दूसरे को इनकरेज करें rather than डिस्करेज करें। इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर।
जज़ाकअल्लाह खैर। जी आप कुछ पूछना। जी
सादा जी, एक आपने जो बताया पॉइंट के दरख्तों को अलग किस सरजमीन पर सामने,
खजूर के दरख्त को, यदि मोमिन का दिल वेस्टर्न माहौल से ज्यादा मुस्लिम माहौल में लगता है। जी आप कुछ सदर उधर ही खड़े हो, ऐसे थोड़ा मैं आपकी बात में थोड़ी सी इजाफा करूं। यदि इन्होंने बात की कि बच्चों को समझाने के नाते से कि हम उनको प्यार से कहें, देखिए पानी कहाँ देते हैं दरख्त को लगाएं तो, अगर कोई जड़ों को छोड़कर پتوں پہ پانی ڈالنا شروع ہو جائے تو درخت کی خیر ہوگی. جڑوں میں بچوں کے ایمان، تقویٰ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، مرنے کا احساس ڈال، اس پہ پانی ڈالیں. آپ اوپر پتوں پہ اخلاق پہ بات کرتے ہیں یا آپ تنے کو پانی دیتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کر لیں، باقی کام خود ہی آسان ہو جائیں گے. کیا صحیح کہا میں نے؟ تو اپنا وقت نہ ضائع کریں، اٹھو نماز پڑھو. یہ کب تک کہیں گے آپ؟ آج یہ آواز بند ہو سکتی ہے، پھر ان کو کون اٹھائے گا؟ رائٹ جی. آپ پیچھے سے بالکل صحیح کہا ہے، اول درس گاہ ماں دی گود دے اندر. آج تو ماں کی گود ہی بنجر ہوئی ہوئی ہے. ماں خود بے علم ہے بےچاری، وہ کس کو بلائے، کیسے سکھائے؟ آج ہم نے ایسی نسلیں پیدا کی کہ جو مائیں بےچاری خود دین سے دور، علم سے دور تھیں. تو ہم تو ان کی نسلوں میں سے ہیں کہ جن کی نسلوں سے ہیرے پیدا ہوتے تھے. آج ہم نے ان کو بچپن سے پوچھنا شروع کر دیا، بڑے ہو کے کیا بنو گے، کیا اس کا جواب لیتے ہیں؟ اکثر کتنا ماں خوش ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا. اب تو ڈاکٹر بھی نہیں لوگ کہتے، اب تو اور الٹے سیدھے نام جو ہمیں لینے بھی نہیں آتے. کوئی اور بات؟ جی آپ پلیز.
میرے پاس نا ایک بچی رہتی ہے، فوسٹر بچی، جو ہندو ہے اس وقت.
بچی کبھی بھی ہندو نہیں ہوتی، بچی بچہ مسلمان ہوتے ہیں. ہاں
تو وہ 17 سال کی ہے نا، اور پچھلے دنوں میں نے سبزیاں بنائی تو وہ کہہ رہی آنٹی آپ کو ہیلپ چاہیے مجھے بتانا. تو میں نے کہا آپ مجھے کاٹ کے دے ایٹ لیسٹ. اس نے کاٹی نا، تو اس کے بعد جب میں نے بنائے تو بہت خوش تھی. میں نے کہا اس کا اجر آپ کو ملے گا. میں نے ایسے خوش کرنے کے لیے اس کو کہا نا. تو آج کل مجھے کہہ رہی ہے کہ آنٹی مجھے روزہ رکھنا ہے، آپ مجھے بتائیں گی کیسے روزہ رکھنا ہے. تو مجھے یہ بھی آپ سے سیکھنا ہے کہ میں اس کو کس طرح،
پہلے دل جڑوں پہ کام کریں، روزے تو وہ رکھ لیں گے خود سے ہی.
اس کا دل چاہ رہا ہے نا،
پیار سے اس کو اللہ کی محبت دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بتائیں، انشاءاللہ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. جی آپ کو ماں. جی بالکل، آپ کی بات پہ ایک اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں صبر جو ہے نا ایک چیک ہے جس کی ایک خاص ڈیٹ ہے. جب ڈیٹ گزر جاتی ہے نا تو چیک کام نہیں آتا، ایکسپائر ہو جاتا ہے. آج دنیا کا صبر، آج اس دنیا میں صبر کے چیک کو کیش کرا لیں، نہیں تو کل کے صبر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں. آن لائن پہ بھی بہت اچھے کمنٹس لکھے جا رہے ہیں، آپ لوگ ضرور پڑھیں. اور 15 منٹ کی بریک، انشاءاللہ نماز اینڈ پہ پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند آیتیں تھیں لیکن مجھے پتہ کہ آپ آج کل بریک بھی آگے ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد تو شاید ہم ایک یا دو ہفتے کے بعد ویسے ہی روزے ہوں گے. تو پریکٹس کریں روزوں کی، اگر بھوک بھی لگی ہو تو سنتے رہیں. ٹھیک ہے، چلے اب کوئکلی اٹھیں اور پھر واپس ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آواز ٹھیک ہے روم میں اب میری؟ جی سسٹر یاسمین 38، آپ پلیز اپنا کوسچن لکھ دیں، ہم استاذہ جی سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ، بہت زیادہ ایمان بوسٹنگ تفسیر تھی آج کی. تو استاذہ جی نے ہمیں کس طرح سے کتنے زیادہ فوائد پہلے درخت کے لحاظ سے بتائے کہ ایک ٹری کس طرح سے ہم لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور پھر اس کا کتنا پیارا کمپیریزن کیا نا مومن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد خبیث کلمے کے ساتھ اس کا پورا ایک طرح سے پکچر بن رہی تھی نا ہم لوگوں کے ذہن میں. अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोग खुद घर में पढ़े हों तो कभी इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे, कभी इस तरह से हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे किसी चीज के साथ, कभी भी नहीं। इस तरह बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि हम लोग एक उस्ताद की गाइडेंस से लाजमी एक बार जरूर पढ़ें हम लोग ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि एक क्विक सी ब्रेक ले लेते हैं हम 10 मिनट्स आई थिंक, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उस्तादा जी अगर रेडी ना हुई तो एक क्विक रिकैप कर लेंगे हम। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق